ये मुझे नहीं चाहिए। प्रणव आए तो वो दूसरा वाइस है इसका लगता है, दूसरा लगा के रखे बोलो।
कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण, जय श्री राम। नमः ॐ विष्णुपादाय, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे, गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषाय शून्यवादी, पश्चात देश तारिणे, गुरवे गौरचंद्राय, राधिका तदाल्यै, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय, तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासादि गौर भक्तवृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाल्मीकि गिरिसम्भूता रामसागर गामिनी, पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी, चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्, एकैकाक्षरं पुंसाम् महापातक नाशनम्, पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरोह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम्, मनोज्वलं मारुतुल्य वेगम्,
जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानर्युथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे रामं रामानुजं सीता भर्त्रं भर्तानुजं सुग्रीवं वायुसोनं च प्रणमामि पुनः पुनः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पत्यये नमः
जय श्री राम। आज दूसरे दिन की रामकथा में आप सब प्रेमी भक्तों का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों की ओर से। भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम घर घर में मर्यादा की स्थापना करना, परिवार के संबंध कैसे होने चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, ये एक अद्भुत संबंधों की मर्यादा का श्री वाल्मीकि जी द्वारा आदि कवि द्वारा प्रकट्य हुआ है। और वाल्मीकि रामायण में तो ऐसे लिखा है कि ऐसा एक कान नहीं है जिसने राम का नाम नहीं सुना हो। जने जने कने कने, जने जने का मतलब हर जनता के व्यक्ति तक और हर कान तक राम के नाम का घोष होता रहता है। पहले तो भारतवर्ष में एक दूसरे से मिलते तो भी राम राम करते थे, और ये राम राम का इतना जब सुबह शाम होता था कि माला करने की जरूरत नहीं थी। जब से ये बंद कर दिया है तब ये सब कुछ करना पड़ रहा है, पहले सुबह शाम ये अपने आप हो जाता था। तो रामचरित्र रामायण के कल हमने बालकांड के अंतर्गत राज अधिराज महाराज दशरथ, और दशरथ का अर्थ होता है जिसका रथ दसों दिशाओं में बिना रोक के जा सके। उनका रथ धरती के ऊपर चलता था और स्वर्ग लोक में भी देवताओं की सहायता के लिए जा सकता था। तो दसों दशाओं में जिसका रथ चल सकता है उसको दशरथ कहते हैं, और जिसकी इंद्रियों के ऊपर संयम हो, दसों इंद्रियों के ऊपर जिसका मन अपने वश में हो उसको भी दशरथ कहते हैं। तो ये महाराज दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंग के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ और अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ और वामदेव आदि के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान अयोध्या नगरी में हुआ है, उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जो देवता आए हैं उनका कल हम श्रवण कर रहे थे कि सारे देवता आपस में विचार कर रहे थे कि ब्रह्मा जी आपने इतने वरदान दे दिए हैं रावण को और कुंभकर्ण को, तो इसलिए इस धरती के ऊपर अब धर्म का पालन करना, गौ ब्राह्मण की रक्षा, यज्ञ की, साधु की, ये सब होना मुश्किल हो रहा है। और जब यज्ञ नहीं होगा तो फिर संसार में वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा अकाल हो जाएगा और वैदिक सारा मर्यादाओं का लुप्त हो जाना अब लगता है। तो अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने वरदान जरूर दिया है दशग्रीवा को, रावण का नाम रावण तो बहुत बाद में पड़ा, जन्म से उसका नाम दशग्रीवा था। दस का मतलब दस, दस टेन, और ग्रीवा का मतलब गर्दन, जिसके दस गर्दन, तो दशग्रीवा उसका नाम जन्म से था। रावण की उत्पत्ति भी अद्भुत है, कैसे ये उत्पत्ति हुई है। पुलस्त ऋषि, ठीक है अभी चल रहा है, पुलस्त ऋषि त्रिबंधु ऋषि के आश्रम में तपस्या कर रहा था। त्रिबंधु ऋषि का आश्रम था, बहुत सुंदर स्थान था। तो पुलस्त, वहां बहुत सुंदर सरोवर था, तो बहुत सी अप्सराएं आती थी स्नान करने विहार करने के लिए, तो पुलस्त ऋषि के वहां तपस्या में भंग पड़ रही थी। और जब ये अप्सराएं आती हैं तो आपस में बहुत ज्यादा बातें करती हैं, तो पुलस्त ऋषि ने एक दिन विचलित हो गए, उनकी साधना में भंग पड़ा, बोला आज से अगर किसी को यहां मैंने देखा और मेरी नजर पड़ी तो गर्भवती हो जाएगी। ये तो सुना जैसे ये अप्सराएं तो चली गई वापस नहीं आई, लेकिन ऋषि की पुत्री ही त्रिबंधु की दूसरे दिन महाराज को प्रणाम करने के लिए गई और महाराज ने नजर दिखाई उठाई तो वो भी अपने आप को लगा कि ये क्या हो गया मुझे, बेचारी दुखी हो गई, पिताजी के पास चली गई। पिताजी ने ध्यान में देखा, अरे ये बेटी तो पुलस्त ऋषि को प्रणाम करने गई थी और ऋषि के कारण तो ये तो अब गर्भवती हो गई। तो त्रिबंधु ऋषि ने जाके कहा, महाराज पुलस्त मेरी कन्या को कुछ मालूम नहीं था कि आपने ऐसा श्राप दिया है, अब ये बच्ची आप विवाह में स्वीकार कर लो। तो पुलस्त ऋषि ने त्रिबंधु की बेटी के साथ विवाह किया और उससे पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ विशर्वा। उस शर्वा कहते हैं श्रवण करने वाला, जिसको वेद सारा श्रोत था, जो सब वेद का ज्ञाता था विशर्वा, ये बहुत बड़ा ऋषि हुआ है विशर्वा। इस ऋषि का फिर आगे विवाह हुआ एडविडा से, जिससे उनको पुत्र हुआ, वो आगे चल के दिग्पाल हुआ, जिस जो लंका का राजा रहा, वो देवताओं का कोषाध्यक्ष, क्या नाम है उसका, कुबेर। तो कुबेर जी पुलस्त के पुत्र हैं, ये दिग्पाल भी हैं। तो जो असुर कुल के हेती परहेती पहले असुर धरती के ऊपर पैदा हुए, फिर उनके वंश में आगे चल के माली सुमाली और माल्यवान हुए, तो सुमाली ने कहा कि हमारे वंश का रक्षा तब होगी किसी ऋषि से हमारा वंश पैदा हो। तो उन्होंने अपनी बेटी केक्सी को ऋषि विशर्वा के पास भेजा कि कहो ऋषि को मुझे पुत्र संतान उत्पन्न कराए दे। तो केक्सी अपने पिता की आज्ञा से ऋषि विशर्वा के पास जाके खड़ी हो गई प्रणाम करके। तो ऋषि विशर्वा तो संध्या वंदन में बैठे थे, बोला कन्या कैसे आई हो, क्या चाहिए। बोला महाराज आप ध्यान करके देख लो। तो महाराज ने कहा आप आई हैं पुत्र संतान के लिए, जिस समय आई है ये समय ठीक नहीं है, और अब जो आपका पुत्र संतान उत्पन्न भी होगा वो बड़ा भारी असुर होगा और धरती के ऊपर बहुत बड़ा संकट पैदा कर देगा, अब क्या किया जा सकता है। उसने कहा महाराज मैं तो कुछ नहीं जानती, आप ऋषि हैं मेरे ऊपर कृपा करें, ऐसा ना हो। बोला ठीक है, फिर अगर आप अब क्षमा याचना मांगती हैं तो आपका छोटा बेटा बड़ा महान भक्त होगा। तो केक्सी और विशर्वा से आगे चल के बड़ा बेटा हुआ दशग्रीवा, फिर बहुत अति काया कुंभकर्ण हुआ, और फिर बहुत ही अगली अंग्रेजी वाली अगली कुरूप सुरपंखा पैदा हुई, और उसके बाद विभीषण छोटा बच्चा पैदा हुआ। तो ये ऋषि विशर्वा की संतान है, पुलस्त का पोत्र है। एक दिन कुबेर अपने पिताजी से मिलने के लिए लंका से पुष्पक विमान वो देवताओं के पास जैसे होते हैं, कोई मशीन से नहीं चलते हैं, लोहे के नहीं बने होते हैं, पेट्रोल नहीं चाहिए उसमें, वो तो यंत्र नहीं है मंत्र से चलते हैं। तो उसमें आए तो केक्सी ने देखा हमारी एक सोतन के बेटे के पास विमान और सोने की लंका, और मैं भी ऋषि की इसी की पत्नी हूं, और हमारे बेटों के पास तो स्कूटर भी चढ़ने को गधा घोड़ा भी नहीं है। तो अपने बेटों को कहा बेटा देखो तपस्या करके ऐसा कोई वर प्रदान करो, देवताओं से प्राप्त करो कि आप भी ऐसे ही बड़े वैभवशाली जीवन बिता सको। तो दशग्रीवा और कुंभकर्ण और सुरपंखा और विभीषण, ये चारों जहां गोकर्ण नाम का स्थान है अभी दक्षिण भारत में केरला के पास गोवा के पास, यहां बहुत बड़ा भारी तपस्या करने लगे। तपस्या ऐसा करने लगे कि 10 साल के बाद एक सर काट के रावण अर्पण कर दे, अग्नि में स्वाहा कर दे,
नौ सर डाल दिए, एक पांव के ऊपर खड़े होके कुंभकर्ण तपस्या कर दे। और ये तपस्या भारी को देखकर ब्रह्मा जी आए और कहा, विश्ववा के पुत्रों, मैं आपकी तपस्या से संतुष्ट हूं, आपको क्या वरदान चाहिए? तो रावण ने तो सीधा पूछा, वरदान क्या चाहिए? हे पिता, मैं आप प्रसन्न हुए तो मेरे को अमर बना दो। बोला, अमर तो नहीं बन सकते। बोला, फिर तो ऐसा करो कि आपकी सृष्टि से कोई मुझे न मार सके, बस केवल मानव और वानर से मुझे कोई भय नहीं है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी। ये रावण के अपने मुख से वरदान मांगा, लेकिन मानव और वानर का उसने निषेध कर दिया। बोला, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। ऐसे शिक्षा ये मिलती है, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कोई छोटा बहुत बड़ा भारी काम कर देता है और पता तक भी नहीं लगता। जो भी हो, रावण को तो सब वरदान दिया कि आपका सर कटेगा तो वापस लगेगा, आप रूप जो चाहो माया से प्रकट कर अपना रूप बदल सकते हो। कुंभकर्ण जब वरदान के लिए जबान खोलने लगा, सारे देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी, ये वरदान से पहले ही ये तो ऐसे हाथ लंबा करता है जैसे मूंगफली की मुट्ठी में आती है, इतने तो ऋषि ऐसे करके मुंह में डालता है सुबह नाश्ते पे, तो इसको आप वरदान देते हैं, जरा विचार कीजिएगा। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुला के कहा कि इसकी जबान के ऊपर बैठ जाओ, जब ये वरदान मांगने लगे तो देवताओं के हित का काम करना। तो विभीषण कहता है, ब्रह्मा जी मुझे वरदान दीजिए, वरदान दीजिए। तब सरस्वती आके जबान के ऊपर कूद के बैठ गई और कहा, ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सोया रहूं। और ब्रह्मा जी का तथास्तु। कुंभकर्ण कहता है, मैं क्या मांग लिया, सोया रहूं इतनी तपस्या करने के बाद? तो ये तो देवताओं की इच्छा थी। और सुरपंखा ने अपना जो है रूप बदलने का, माया से कहीं भी जाने का, आकाश से उड़ने का वरदान ले लिया, लेकिन विभीषण ने कहा, भगवान की भक्ति मेरी सदा अटल रहे, ये मुझे वरदान दे दो। अब तो रावण बड़े बड़े वरदान लेके जैसे आया तो नाना आ गए वापस। वो सुमाली माली आके माल्यवान कहते हैं, बेटा ये लंका हमारी राजधानी थी पुरानी, यहां हम राज करते थे, ये तो बाद में भगवान विष्णु ने हमारे भाई को मारा और हमको यहां से भगा दिया, तब से ये कुबेर को मिल गई है, आपको हम हमारे असुरों का असुर राज बनाते हैं, आप लंका को प्राप्त करके लंकेश बन जाइए। रावण अभी तक नाम रावण तो नहीं है, दस्युगिरी कहता है, नाना जी वो मेरा भाई तो वहां पहले राज कर रहा है, हमारा भाई है, विश्ववा का पुत्र है, अब कुबेर से मैं वो भाई को कैसे निकालूं? बोला, देवताओं और असुरों में भाई कोई किसी का नहीं होता है। कश्यप की एक पत्नी दिति, उसके बेटे दैत है, दूसरी पत्नी आदित्य, उसी के बेटे देवता है, ये तो सारी उम्र से लड़ते आ रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, भाई भाई से ये तो पुराने जमाने से यहां चलता आ रहा है, ये नया नहीं है। आप ऐसा करो, अपने को तो ये है राज चाहिए। अब दसगिरी बजा के कहता है कुबेर को, अब यहां से आप लंका खाली करो, ये हमारे पुराने पूर्वजों का राज था, हमारे नाना यहां राजा हुआ करते थे। कुबेर ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये हमारा भाई दसगिरीवा कहता है कि आप राज खाली कर दो। विश्ववा ने कहा, बेटा इस वक्त तपस्या का इसको बहुत बड़ा घमंड है, बहुत बड़ा इसको इस वक्त मद हो गया है, नशा हो गया है, बहुत बड़ा अहंकार हो गया है, इस वक्त इससे लड़ना अच्छा नहीं है, बेटा आप अपनी राजधानी को वहां से बदल दो। और कुबेर ने लंका को खाली करने का निश्चय कर लिया, और कुबेर ने अभी तो अपनी राजधानी जो बनाई है वो बद्री का आश्रम में है, बद्री का आश्रम कुबेर का क्षेत्र कहलाता है, आज भी बद्री का आश्रम के मुख्य मंदिर में कुबेर जी का मूर्ति विराजमान है, कुबेर जी वहां विराजमान है, और वहां का क्षेत्रपाल जो घंटा कर्ण है, जिसके कान में घंटा बंधे हुए हैं, वो उस क्षेत्र का क्षेत्रपाल है, और ऊपर पर्वत के ऊपर कुबेर की नगरी आज भी मानी जाती है, एक पर्वत के ऊपर वहां जो मिलिट्री रहती है वो कहती है हमारे हेलीकॉप्टर इस पर्वत के ऊपर से नहीं जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है पता नहीं, हमारे जहाज यहां से जाता है तो बंद हो जाता है, तो उसके नीचे कुबेर, वो कुबेर की राजधानी वहां अभी उधर है। कुबेर जब जाने लगे पुष्पक विमान में, तो दसगिरीवा कहते हैं इसको भी छोड़ के पैदल जाओ, अभी ये यहां का है, यहां रहने दो। तो ऐसे रावण लंकेश बन गया, अब लंका का राजा बन गया, ये सब वरदान इसको प्राप्त हो गए। तो एक तरफ ये वरदान प्राप्त हो गया, और दूसरी तरफ आखिर भगवान के अवतार का कोई कारण तो होना चाहिए, जैसे भगवत गीता में तो सीधा ये श्लोक हम पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्म से, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, असुर बढ़ जाते हैं, तो भगवान का अवतार होता है, धर्म की स्थापना होती है और असुरों का संहार होता है, भक्तों को का सुरक्षा संरक्षण करते हैं भगवान। ये तो भगवान के अवतार का मुख्य एक कारण है। तो यहां आकर भगवान के अवतार के लिए भी कोई मुख्य कारण बनना चाहिए, तो अब अपना अधर्म होना चाहिए। तो रावण ने क्या किया, जैसे लंका का राजा बना, बहुत बड़ा विमान पुष्पक के ऊपर चढ़ के अपने मंत्रियों को लिया है और भ्रमण करने के लिए निकला है और कैलाश के पास पहुंचा, कैलाश पर्वत के पास पहुंचा तो देखता है बंदर की शक्ल में कोई एक व्यक्ति खड़ा है। वो था नंदी भगवान शंकर का गण, उस रूप में खड़ा था और उसने कहा यहां से आगे विमान मत ले जाओ, ऊपर हमारे स्वामी शंकर और पार्वती ब्राज रहे हैं कैलाश में। उसने बोला कौन होता है शंकर पार्वती, कौन हमारे विमान को रोक सकता है, मैं इस पर्वत को ही हिला दूंगा। और नीचे उतर के विमान से पर्वत के नीचे हाथ डाला और हिमालय को हिलाया, पार्वती जी शंकर जी की गोद में गिरी और शंकर जी को क्रोध आया कौन है ऐसा, और उसने पांव उल्टे के अंगूठे से पर्वत को दबाया और दशग्रीवा का हाथ उसके नीचे दब गया, और दब गया तो अब पर्वत के नीचे हाथ दबा और शंकर जी के अंगूठे के भार से दबा है, रोने लगा, ऐसा रोया कि उसके रोने का आवाज तीनों लोगों ने सुना, तब उसका नाम हो गया रावण रोने वाला। और जिसका रोना दुनिया पूरी सुने और आगे चल के जहां जाए सबको रुलाए, वो रावण जो रुलाने वाला है वो रावण है। अब इसका नाम रावण हो गया। और नंदी को उसने कहा हे बंदर तू हमको रोकने वाला है विमान को। नंदी ने कहा तुमने मुझे बंदर कहा है, ये बंदर तेरे सारे राज का सत्यानाश करेंगे और तेरे वंश का विनाश सारे बंदर करेंगे। ये पहला श्राप रावण को मिला। अब रावण के श्रापों की श्रृंखला शुरू होती है। आगे रावण यहां से हिमालय से अब शंकर जी को तो प्रणाम करके चले हैं और फिर साइड से जैसे चलने लगे हैं तो देखा कि एक बहुत बड़ी तपस्विनी जटाएं जूट बंधी हुई है और तपस्या कर रही है, कन्या कोई बहुत सुंदर तपस्या कर रही है। रावण जी विमान से उतर के कहा हे सुंदरी किसके लिए तपस्या कर रही है, कौन चाहिए। पर मेरा नाम वेदवती है, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था तपस्या करो भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त करना, तो मैं भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। रावण कहता है मैं लंकेश हूं, क्या करेगा विष्णु को, क्या करोगी, मुझसे विवाह कर लो। वेदवती ने कहा मैं निश्चित करके तपस्या विष्णु को प्राप्त करने के लिए कर रही हूं। तो रावण ने उसकी जटाओं में हाथ डाला पकड़ने के लिए, उसने अपने दूसरे हाथ को ऊपर ऐसे उठाया तलवार जैसा बना के अपनी जटा को ही काट लिया। रावण का हाथ उधर रह गया, जटा उसके हाथ में आ गई और कहा भी ये शरीर में नहीं रखूंगी जिसके तुमने हाथ लगाया है ये दुष्ट, अब मैं तुम्हें श्राप दे के मेरी तपस्या का विनाश नहीं करना चाहती हूं, मैं अभी शरीर तो छोड़ रही हूं लेकिन तुम्हारा विनाश का कारण मैं बनूंगी। ये वेदवती आगे चल के महाराज जनक के यज्ञ भूमि में चलाते हुए हल से सीता के रूप में प्रकट होती और ये छाया सीता के रूप में आगे रावण अपहरण करके जाता है जो रावण के विनाश का कारण बनेगी। तो ये वेदवती है। और यहां से रावण आगे चला है तो स्वर्ग के पास जब देखा तो रंभा स्वर्ग की अप्सरा वो कहीं सज धज के जा रही थी, रावण ने उसको पकड़ लिया। अब यहां एक भगवत गीता का श्लोक याद आता है, आपको बता दें काम क्रोध लोभ नरक द्वारम, ये भगवत गीता का श्लोक है, काम क्रोध और लोभ नरक का द्वार है और इन तीन को अभिन्न करके दिखाने के लिए भगवान ने अपने ही तीन अपने दो पार्षदों को तीन जन्म लेके धरती के ऊपर भेजा। वैकुंठ से अब यहां ये कथा याद रखना, इस कथा के अंदर दूसरी कथा अब आ रही है। भगवान विष्णु बैठे हैं अपने वैकुंठ में तो एक दिन लक्ष्मी जी आके एक शिकायत करती है कि मैं रात को देर से आ रही थी ये आपके दरवाजे के ऊपर जो दो आपने दरबान रखे हैं, जो गेट कीपर चौकीदार जय विजय, मुझे कह रहे थे अंदर मत जाओ, हमारा स्वामी सो रहा है। अरे आप हमारे स्वामी के उनके स्वामी है, ये कैसे गेट कीपर है जो हमको रोकते हैं मालकिन को? भगवान विष्णु कहते बात तो आपकी ठीक है, लेकिन पत्नी के कारण किसी को डांटेंगे तो लोग कहेंगे भगवान ये तो पत्नी की आज्ञा में ही चलता है, इसलिए अब रुको कुछ लीला करते हैं। और भगवान ने थोड़ा ऐसे हाथों में देखा कि बहुत सी खुजली हो रही है, बहुत दिन हुआ, कहीं थोड़ा सा लड़ाई झड़ाई करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा किया नहीं है, बैठ बैठ के थक गए। और ये लक्ष्मी समझती है हम कमल कमल जैसे बिल्कुल कोमल है, लेकिन उन्होंने हमारा वज्र जैसा रूप तो देखा ही नहीं है। तो आज भगवान के मन में का संकल्प हुआ और योग माया ने क्या किया कि ब्रह्मा जी के पहले ब्रह्मचारी चार पुत्र सनक आदि को प्रेरणा दी कि वैकुंठ में प्रवेश करके भगवान का दर्शन करते हैं। छह द्वार तो पार करके सातवें द्वार पे आए तो जय और विजय ने दरवाजा बंद कर दिया, ला डंडे सामने रख दिए, कहां जाते हो नंगे पतंगे, हे वैकुंठ में जाने के लिए कपड़े भी नहीं पहन के आयो। अब वो बच्चे 5 साल जितने लगते हैं, लेकिन हैं तो दुनिया में सबसे पहले पैदा आई है, ये सृष्टि के ऊपर ब्रह्मा जी की पहली वो उत्पत्ति है और मानसिक पुत्र हैं, सबके पूर्वज हैं, ज्ञान के आचार्य हैं। उनको जो ऐसे कहा उनको क्रोध आ गया, उनको क्रोध नहीं आना चाहिए लेकिन भगवान की लीला होनी है। उनने कहा आपको किसने कहा है वैकुंठ के दरवाजे के ऊपर, आप तो धरती के ऊपर जाओ जहां द्वेष है, आप यहां भी द्वेष करते हो, वैकुंठ में भी कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन नंगे आए और कौन कपड़े वाला है, ये विचार होता है क्या? यहां द्वंद है क्या? वैकुंठ में द्वंद नहीं होते हैं। और ये जब सुना तो भगवान विष्णु वहां भागते हुए आए और ब्राह्मणों को तो कहा कि आप ब्राह्मणों आपका स्वागत है, और अपने कहा कि ठीक है आप इनको 3 बार असुर बनना चाहिए। तो हम कह रहे थे वो जय और विजय पहले हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु बने, और हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु, हिरण्य का मतलब है सोना, तो सोने के पीछे भागने वाले लोभ का प्रतीक है हिरण्यकशिपु, तो पहला लोभ हिरण्यकशिपु, और काम का प्रतीक है रावण, जहां जाएगा कोई ना कोई अप्सरा उठा के आएगा, लड़की उठा के आएगा, ये काम का है, और क्रोध का प्रतीक तीसरे जन्म में शिशुपाल है। तो काम क्रोध लोभ ये तीनों के उदाहरण, ये तीन असुर के रूप में भगवान ने अपने पार्षद भेज के दिखाया कि कैसे विनाश का कारण बनते हैं, सर्वनाश कैसे हो जाता है। जो भी है आगे कथा को करते हैं, उसी कथा को आगे करते हैं। तो आज भगवान विष्णु पहले अपने भक्त को कहा आप जाओगे आप यहां से, लेकिन आपको वापस लेने के लिए मैं ही आऊंगा। तो भगवान को लड़ने का मूड था, और कौन भगवान से लड़ाई करेगा, अपने ही दो पार्षद नीचे आए और हिरण्यकश्यप जो बड़ा भाई था उसके साथ तो भगवान वाराहदेव ने युद्ध किया और उसका वाराहदेव ने उद्धार किया, लेकिन हिरण्यकश्यपों के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए नरसिंह देव, हम सब ये जानते हैं कथा। जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप का तो उद्धार कर लिया, उसके बाद इतने क्रोधित हो गए कि सारे देवता उनको शांत न करा सके। जब सारे देवता शांत न करा सके तो लक्ष्मी को कहा आप जाओ पति देव को शांत कराओ। लक्ष्मी ही ने आज ये रूप देके कहा मूड ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी नजदीक। आज लक्ष्मी ने ये नरसिंह का बड़े बड़े नाखून वाला रूप देखा, बड़ी भयभीत हो गई। तो आज वज्र का रूप लक्ष्मी को दिखाया है, और उसके बाद छोटा प्रहलाद जैसे प्रणाम करने गया, क्रोध पता नहीं कहां चला गया, प्रहलाद को ऐसे गोद में उठा के बिठा दिया और चाटने लगे, वात्सल्य प्रेम उमड़ गया। देखा अरे मुझे सुख मिल रहा है इस बच्चे को गोद में लेकर, लेकिन मुझसे 1000 गुना ज्यादा बच्चा सुखी है, खुश हो रहा है। जब माँ बाप बच्चे को उठा के दे हैं तो उनको थोड़ा सुख मिलता है, लेकिन बच्चे को 100 गुना ज्यादा सुख मिलता है, तभी तो थोड़ी देर के बाद नीचे उतार देते हैं, बच्चा उतरना नहीं चाहता है। तो नरसिंह देव ने कहा कितना सुख मिलता है माता पिता की गोद में खेलने का। तो देखा मेरा माता पिता ये खंभा है, इसकी गोद में क्या बैठूंगा, मैं तो यहां से प्रकट हुआ हूं। तब वो नरसिंह देव ने संकल्प कर लिया अब जब अवतार लूंगा हम अपने किसी प्रेमी भक्त को धरती के ऊपर भेज के माता पिता बनाऊंगा, और छोटा बालक उनकी गोद में खेलकर और वात्सल्य प्रेम का आनंद लूंगा। तो उस वात्सल्य प्रेम की श्रृंखला में नरसिंह देव का किया हुआ संकल्प आज राम के रूप में प्रकट होने से पहले एक माता की जगह 3-3 माताओं की गोद में खेलने का भगवान ने ये बहुत सुंदर जो है अपनी इच्छा पूरी करने का भाव प्रकट किया है। और आगे राम अवतार के बाद क्या भाव आएंगे आगे बताएंगे। और यहां रावण की कथा को वापस शुरू करते हैं। रंभा को जाते हुए देखा सज धज के और रंभा को पकड़ लिया और पकड़ लिए कहां जा रही हो, रावण के सामने आने वाला कोई जा नहीं सकता है। और प्रेम से उसको पकड़ा, उन्होंने कहा मैं आपकी पुत्र वधु हूं, आप मेरे सुसर हैं। बोला कौन किसका पुत्र वधु कैसे मेरी हो? बोला नल कुबेर की पत्नी हूं, नल कुबेर आपके भाई कुबेर का बेटा है और कुबेर और आप तो भाई हो तो आप मेरे ससुर हुए ना, तो मैं आपकी तो पुत्र वधु हूं ना। बोला अप्सरा किसी की पुत्र वधु नहीं होती। और बलात् उस रंभा को नीचे गिरा के और उस उसको ह्यूमिलिएट किया। वो बेचारी दुखी अपने पति नल कुबेर के पास गई। नल कुबेर ने ध्यान करके देखा कि रावण ने बहुत बड़ा अत्याचार किया है। उसने कहा आज से अगर किसी स्त्री को बगैर इच्छा के रावण हाथ लगाएगा तो उसका सर फट जाएगा और मर जाएगा। इस श्राप के बाद रावण ने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के अलावा हाथ लगाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए एक साल तक सीता रही है अशोक वाटिका में, लेकिन रावण बहुत दूर खड़े होकर बात करता था, उसको इस श्राप का पता था। इससे पहले तो बहुत ऋषियों की देवताओं की कन्याओं को उठा के ले जाता था रावण, तो ये एक और श्राप मिला। तब रावण ने एक बार तो देवताओं के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया और देवता इंद्र जी मोर बन के छुप गए और यमराज जी कौवा बन गए, अभी मिले नहीं कहां चले गए, किरो बन गए। अब ऐसी जब स्थिति हो गई तो बच तो गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वापस इंद्र जी अपने इंद्र रूप में आए तो मोर को बड़ा आशीर्वाद दिया कि पहले तुम्हारा केवल ब्लू कलर होता था, अब तो तेरी पूंछ ऐसी चमकेगी और इसके अंदर आंखें बन जाएंगी। और यमराज ने कौवे को कहा अब कोई भी अपने पितरों को श्राद्ध करेगा तो कौवा तुम्हारे को वैसे तो कोई पसंद नहीं करता, लेकिन श्राद्ध में तुम्हें याद करके खीर खिलाएंगे। आज तुम्हारे को तो ये रावण के समय इन देवताओं ने ये पक्षियों को आशीर्वाद दिया है। और उस वक्त अयोध्या की नगरी के ऊपर आक्रमण करने के लिए रावण पहुंचा है। अर्णव नाम का राजा वहां राज करता है और उसके साथ जो युद्ध हुआ है अंतिम समय अरवण को महाराज अरवण को मारने लगे रावण, तो अरवण ने कहा ठीक है आने वाले समय में हमारे वंश के अंदर ऐसा राजा पैदा होगा, रावण तुम्हारे सारे वंश का विनाश करेगा। तो इतने सारे शाप रावण के गले में थे, इतने सारे कारण राम के अवतार के जो सूचक थे। तो आज जो देवता इकट्ठे हुए हैं और उस देवता सारे आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हमारे को इस रावण के अत्याचार से कौन बचाएगा, तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए हैं। और भगवान विष्णु के आते ही सब देवताओं ने प्रणाम करके प्रार्थना की है और कहा कि हम आपको आदेश करते हैं, नियुक्त करते हैं। ये बहुत बड़ा रस लिखा है यहां कि वाल्मीकि जी ने राम को भगवान करके नहीं दिखाया है, जैसे वृंदावन में कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता है, वृंदावन में कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता, मेरा बेटा है, मेरा मित्र है, मेरा ऐसे पितृ पुत्र है, ऐसा भाव है वृंदावन का। ऐसे राम जी को कि मानव के रूप में ही प्रतिष्ठित करना है, क्योंकि मानव ही रावण को मार सकता है। अगर देवता होके आए, विष्णु होके आए, तो ब्रह्मा जी के वचन का खंडन हो जाएगा। तो यहां भगवान विष्णु को देवता कहते हैं, हम आपको नियुक्त करते हैं। ऐसा है जैसे अर्जुन कृष्ण को आदेश करता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं में ले चलो। और भगवान के आदेश से दुनिया चलती है, सूर्य चंद्र भगवान के आदेश में और भगवान भक्त के आदेश में। और देवता तो भगवान के भक्त हैं ही, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृद्यन्ति युगे युगे। तो देवताओं ने कहा भगवान विष्णु को आप हमारी रक्षा कीजिए, धर्म की स्थापना कीजिए। और कल ये कथा कही थी, भगवान विष्णु ने कहा अभी इसी वक्त यहां मैं इसी यज्ञ में, यज्ञ से उत्पन्न होने वाले यज्ञ पुरुष के हाथ में कलश के अंदर प्रवेश करके और महाराज दशरथ के घर में प्रकट होने जा रहा हूं। यज्ञ पूरा हुआ, कल कहा था यज्ञ के अंदर से यज्ञ पुरुष ने कलश दे दिया और कलश लिया ऋषि श्रृंग ने और ऋषि श्रृंग ने महाराज दशरथ को दिया और फिर उस पायसम का खीर का बंटवारा हुआ। समय आने के ऊपर भगवान राम के प्रकट्य के समय को कहते हैं ऋतुराज, जो मौसमों का, जो ऋतुओं का, जो 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 सीजन्स का किंग है, ऋतुनाम कुसुमा करह, भगवद गीता में है, बसंत की ऋतु के दो महीने हैं। कितनी ऋतु आप जानते हैं? छह ऋतु हैं भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में छह ऋतु हैं, दो दो महीने की हर एक ऋतु, और हर ऋतु के कपड़े अलग है, भोजन अलग है और उत्सव अलग है। और आयुर्वेद में इन ऋतुओं के अनुसार अगर कोई अपना जीवन जिए तो बीमार नहीं होगा, इसका अपना एक मर्यादा है ऋतुओं की। हमारे कुछ ऋतुओं का अभी पता नहीं लगता है, आपके यहां तो ऋतु है नहीं, कम गर्मी और ज्यादा गर्मी, और रशिया में कोई ऋतु है नहीं, ज्यादा सर्दी और कम सर्दी, बाकी ऋतु का नाम तक नहीं पता है केवल ये। तो भारत में छह ऋतुएं दिखती हैं। तो बसंत ऋतु ये जनरली चैत्र वैशाख का महीना होता है, ये अप्रैल मार्च, मार्च का एंड और आधा अप्रैल मई का आधा इसका, ये जो है बसंत ऋतु कहलाती है। तो भगवान ने कौन सी ऋतु में प्रकट होने का समय अपना चुना? बसंत ऋतु, ऋतुराज बसंत के। और चैत्र महीने में विचित्र, भगवान का अवतार विचित्र होता है, जैसे भगवत गीता में कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कोई सामान्य रूप से प्रकट नहीं होते हैं। दशरथ से प्रकट होना होता तो पहले हो जाते, ये तो भगवान विष्णु पायसम में यज्ञ से प्रकट हुए, दशरथ में भगवान प्रकट करने की, दशरथ के अंदर कोई पुत्र प्रकट करने की नहीं थी सामर्थ्य। ये तो कौशल या शब्द का अर्थ है कुशल, कुशल उसको कहते हैं जिसकी बुद्धि भगवान को ग्रहण करने वाली हो। वैसे भी हम कहते हैं धीमही, धीमही का मतलब हमारी बुद्धि वरेण्यम वरण करे, भगवान को बुद्धि हमारी वरण करे। जो बुद्धि भगवान को वरण करती है उस बुद्धि को कहते हैं विशुद्धम सत्वम वासुदेव शब्द्यते। जो बुद्धि तीनों गुणों से ऊपर होती है, जिसमें भगवान, जो बुद्धि भगवान को वर्ण करती है उस बुद्धि का नाम होती है सतीमति। सतीमति का मतलब वो मति जिसने एक भगवान को अपना पति माना है, और दूसरी बुद्धि जो होती है उसको पुरंजनी कहते हैं। हमारी बुद्धि जो संसारी लोगों की वो पुरंजनी है, वो बुद्धि पुरंजन आत्मा को पति मान लेती है और संसार में भोग करने लगती है। तो दो प्रकार की बुद्धि का वर्णन भागवत में है, शास्त्र में। वैसे बुद्धि जब बुद्धि जो भगवान को चुन ले उसको मति बोलते हैं, उस बुद्धि का नाम हो जाता है मति। मति का मतलब मत, जैसे हम मतदान कहते हैं कि किसी को मैंने को चुनना है, उसको मत कहते हैं। जिसकी बुद्धि ने भगवान को चुन लिया उसको मति कहते हैं। और भीष्म पितामह कहते हैं इति मति उपकल्पिता वितृष्णा, मेरी मति भगवान मैं आपको अर्पण करता हूं। और वैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं आपका मन और बुद्धि हमें अर्पण करो। तो ये बुद्धि भगवान को अर्पण करना और बुद्धि में भगवान को निवास कराना, तो कौशल्या की बुद्धि में भगवान का प्रकट्य होता है असल में। तो कौशल्या कुशल शब्द है, कुशल का मतलब होता है कर्म ही कौशलम। कुशल शब्द जो निकला है वो कुश घास से निकला है। जो कुश घास होता है ना पूजा में, उसको निकालने के लिए ऐसा पंडित चाहिए जिसकी जड़ भी साथ में आए और हाथ भी नहीं कटे। कुश का घास तलवार जैसा तेज होता है, और केवल 15 दिन में साल में एक बार कुशल ब्राह्मण उसको जड़ से निकालता है, हाथ भी नहीं कटता है, ऐसे ब्राह्मण को कुशल ब्राह्मण कहते हैं। तो इस संसार में कर्म भी करे लेकिन पीछे कोई फल भोगने के लिए रहे ही नहीं, और जब तक रहे किसी में फंसे नहीं, कहीं से कटे नहीं, उसको बोलते कुशल ब्राह्मण। तो कौशल्या, कौशल्या के यहां राम जी ने चैत्र महीने में अब कौन सा दिन चुना? इससे पहले भी आगे विद्वानों ने बहुत बड़ी गणना की है, जैसे भगवत गीता, जैसे भागवत में और चैतन्य चरितमृत में लिखा है भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में आते, ऐसे रामचंद्र 24वीं चतुर्युगी के त्रेता युग में आते। तो 1,85,55,085 साल हुए राम जी के प्रकट्य को, ये गणना की है विद्वानों ने। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता युग में राम जी का प्रकट्य होता है, तो उसके बाद 28वीं चतुर्युगी में कृष्ण का प्रकट्य होता है। तो 1,85,55,085 साल पहले राम जी का प्रकट्य कौन से महीने में? चैत्र महीने में। कौन सी तिथि भगवान ने चुनी? कहते हैं एक दिन एक बुढ़िया बिल्कुल थकी दुबली राम सीता के सामने आ गई। राम जी ने पूछा कौन हो देवी? बोला महाराज आप पूछते हैं तो मैं बताता हूं, लेकिन मैं जिस हम जिसको नाम बताते हैं वो तो हमको धिकार के निकाल देते हैं, कौन हो आप? बोला मैं नवमी तिथि हूं। ज्योतिषी कहते हैं चौथ चौदस और नौमी रिक्ता तिथि है, चौथ चौदस और नौमी रिक्ता मतलब खाली है, कोई नया काम नहीं शुरू किया जा सकता है इसमें। तो नौमी कहती है हमको रिक्ता करके कोई पूजा नहीं करता, उसमें कोई पुण्य कार्य नहीं होता है। भगवान पूछा आप रिक्ता हो नौमी? बोला हाँ मैं बिल्कुल रुकता हूं, खाली हूं। बोला कोई खाली होता है उसको हम भर देते हैं। और सीता की ओर देखा रामचंद्र ने, सीता ने मुस्कुरा के कहा ठीक है, राम भी नौमी के दिन प्रकट होते हैं और सीता भी नौमी के दिन ही प्रकट होती है। तो चैत्र में राम होते हैं और वैशाख में सीता होते हैं, सीता नौमी है और राम नौमी है, और आज नौमी तिथि निहाल हो गई। आज से नौमी भगवान जो प्रकट होते हैं तो बहुत बड़ा उत्सव होता है। महीना चैत्र का है, तिथि नौमी की है, और पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र में खोई ही हुई चीज वापस मिल जाती है। तो जो मर्यादाएं जो धर्म के संस्कार लुप्त हो गए थे उनको पुनः भगवान स्थापित करेंगे। ये पुनर्वसु नक्षत्र की महिमा है, पुनर्वसु नक्षत्र है, सूर्य वंश में वो प्रकट हो रहे हैं। तो मध्य काल का समय चुना है, दिन कौन सा है? बोला सीता तो इस बार भूमि की पुत्री होके प्रकट होगी, धरती की पुत्री है सीता, और मंगल जो है वो पृथ्वी का पुत्र है। तो मंगल का दिन भगवान ने चुना कि ये पृथ्वी के पुत्री सीता का भाई है मंगल, तो ये साले का दिन है। ये भगवान, ये सारे जो महात्मा भगवान है ये ससुराल में ही रहते हैं। अब पार्वती किसकी बेटी है? हिमालय की और मिनका की। और विवाह किससे हुआ है? शंकर जी। और शंकर जी कहां रहते हैं? कैलाश में। तो अपने ससुराल में बैठे हैं कि नहीं? अब लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई? बोला खीर सागर से। और भगवान विष्णु कहां रहे? बोला खीर सागर में सोए हुए। तो ससुराल में है कि नहीं? तो ये सब उधर ही सुखी रहे। ये सब का वही। तो मंगलवार का दिन है, मध्याह्न काल का समय है, और कौशल्या के वहां भगवान रामचंद्र का प्रकट्य होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या के हितकारी मुनि मन हारी। मुनियों का मन हरण करने वाला अद्भुत रूप निहारी, बड़ा अद्भुत रूप है। वैसे तो चतुर्भुज रूप में जैसे प्रकट होते हैं ऐसे प्रकट होके फिर बाल रूप धारा का रोदन ठाना, रोने लगे बाल, बोला रो मत, तो भाई बच्चा तो रोएगा। तो ऐसे अद्भुत भगवान श्री रामचंद्र का यहां प्रकट्य होता है। और फिर दशमी के दिन के ऊपर कैकेयी के यहां भरत का प्रकट्य हुआ है, और फिर सुमित्रा ने दो सुंदर पुत्रों को जन्मदिन दिया है, और यहां महाराज के यहां बड़ा आनंद मंगल हुआ है। दशरथ के घर में एक के जगह चार, एक के बजाय चार पुत्रों का प्रकट्य हुआ है, और ये चारों विष्णु तत्व है। भगवान चतुर्व्यूह में से वसुदेव राम जी के रूप में प्रकट हुए हैं, संकृष्ण लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए हैं, और भरत और शत्रुघ्न ये हैं प्रद्युम्ना और अनिरुद्धा। और किसी कल्प में ब्रह्मा जी के दूसरे दिन में, कई बार राम का अवतार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, त्रेता युग के चतुर्थवीं चौबीसवीं चतुर्युगी में आते रहते हैं। ये राम की कथा में कभी कभी स्थान अंतर मिलता है, तो कभी कभी ऐसा भी लिखा मिलता है शंख और चक्र का अवतार है प्रद्युम्ना अपना भरत और शत्रुघ्न। तो वो कल्प भेद से ऐसा वर्णन भी शास्त्र में आता है। बारहवें दिन पे नामकरण संस्कार की विधि की गई। महाराज वशिष्ठ को बुलाया गया, सोने का सिंहासन के ऊपर वशिष्ठ जी विराजमान है, और तीनों माताएं चार बालकों को गोद में लेकर बैठी हैं। नाम संकरण संस्कार जल्दी कर लेना चाहिए। वैसे भगवान श्री कृष्ण का नामकरण एक साल के बाद हुआ, क्योंकि गर्ग ऋषि आया तभी नामकरण संस्कार हुआ, और वो नामकरण संस्कार भी गौशाला में हुआ। दो माताएं और एक नंद बाबा और एक गुरु जी, वो तो छुप के करना पड़ा, लेकिन यहां तो बहुत बड़ा राम जी के नामकरण संस्कार का इतना बड़ा उत्सव है, सारे मंत्री मंडल बैठे हैं, ऋषि गण बैठे हैं, वशिष्ठ जी सोने सिंहासन के ऊपर बैठा है, वशिष्ठ जी बालकों को और देखा है और ऐसे समाधि में चला जाता है। वशिष्ठ जी को याद आता है कि ब्रह्मा जी के मन से जब मैं प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि आप पुरोहित बन जाओ इक्ष्वाकु वंश के, सूर्य वंश के। और वशिष्ठ का मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे चार भाई सनतकारी कुमारों की तरह मैं भी ब्रह्मचारी बन के भगवान का सुमरण करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम बड़ा, तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारे गोद में भगवान देंगे, तुम उसका नामकरण करोगे, उनका हाथ पकड़ के उसको लिखाना सिखाओगे, उसका विद्या आरंभ संस्कार करोगे, आपको ये सौभाग्य मिलेगा। और आज पिताजी का वचन, ब्रह्मा जी का वचन सत्य हो रहा है और वशिष्ठ जी ऐसे आनंद में विभोर हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में दशरथ जी कहते हैं ये बालक को उठा के उनकी गोद में दे दो। तो कौशल्या ने जैसे राम जी को उठा के गोद में दिया है और गोद में लेके वशिष्ठ जी कहते हैं इनका राम छोटा दो अक्षर का होगा नाम, लेकिन ये राम रमंत योगी नाम यत्र आत्मनि, योगी जिसमें रमण करेंगे और ये नाम कल्याणकारी इसका राम होगा। और अद्भुत बालक दूसरे का नाम के कई पुत्र का भरत होगा, जब सबका भरण पोषण करेगा, ये तो अयोध्या का भी भरण पोषण करेगा और तपस्या में राम के समान उसका भी भार उठाएगा। और ये लक्ष्मण इसका तो चिन्ह दिखा रहा है कि राम के पीछे चलने वाला है, इसको देखने से राम का नजर आएगा और ये राम की सेवा में सदा रहेगा। और ये जो शत्रुघ्न है ये तो बाहर के शत्रु, क्या इनके नाम लेने से अंदर के शत्रु भी नाश हो जाएंगे, काम क्रोध ये चारों लालन बहुत बड़े आनंद से प्रेम से लाड से जब पल रहे हैं। तो एक दिन सुबह सेवा करने वाली माता देखती है तो कौशल्या के भवन में राम लला सोए हुए हैं, उनके पास छोटा सा लक्ष्मण उनके पांव में सोया हुआ है। और जाके देखती है केकई के महल में भरत के पांव के पास शत्रुघ्न सोया हुआ है। बोले छोटे बच्चे कैसे यहां चल के आए, कौन उनको लाया? आश्चर्य लगा, सब जाके गुरुजी से पूछने लगे, गुरुजी ये कैसे हो गया? वो छोटा बच्चा सुमंत्रा के महल से एक केकई के महल में पहुंच गया, एक कौशल्या के महल में। गुरुजी मुस्कुरा के कहते हैं ये तो कोई गंधर्वी माया है। क्या गंधर्वी माया है, किसका उपकार क्या? बोला आज से लक्ष्मण को राम जी के साथ सुला दिया करो और शत्रुघ्न को भरत के साथ, ये दोनों भाइयों की जोड़ी कभी अलग होने वाली नहीं है। तो वो इस तरीके से बड़े होने लगे। वाल्मीकि रामायण में ज्यादा बाल लीलाओं का वर्णन नहीं, तुलसीदास ने रामचरितमानस में बाल लीलाओं का थोड़ा बहुत वर्णन किया है, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र ऐसे गाया भी है। तो बाल लीलाओं का वर्णन ज्यादा वाल्मीकि जी ने नहीं किया है, उसको बहुत ज्यादा करुणा भाव का इच्छा थी मन में। कहीं अन्य एक रामायण में लिखा है एक दिन राम लक्ष्मण कहीं खड़े हैं, एक लड़की पानी भरने के लिए जा रही थी और उसके नाक में छोटा सा जैसे कान में बाली होती है नाक में भी ऐसे नथ थी, तो लक्ष्मण ने एक तीर मारा तो बाली इतनी छोटी हो गई बेचारे के नाक दुखने लगा। तो देखने लगी किसने मारा, जब तक उसकी पीड़ा देखी राम जी ने दूसरा बाण मारा तो वो उठ के आकाश में चली गई, वहां से उखड़ी, उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसे देख रही है मेरी वाली कहां गई मेरी वाली कहां गई, तब दोबारा एक तीर मारा वापस आके नाक में लग गई। ये तो शिक्षा से पहले बाण मार रहे थे ऐसा, तो उनका ये जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा जब बाद में होगी, लेकिन ये लीला है पहले हो जाती है। और इसके बाद अब शिक्षा का समय आया कि इनको गुरु के आश्रम में ले जाना चाहिए। आज वशिष्ठ जी के आश्रम में चारों बालकों को लेके गुरु महाराज दशरथ गए हैं और वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज आप अब पधारिए, हम बच्चों का शिक्षा के आरंभ का कार्य शुरू कर देंगे। तो महाराज दशरथ कहते हैं हम हमेशा पिता के सामने सब विधि विधान होते हैं। अब वशिष्ठ जी क्या कहे, कहे ये तो कोई सामान्य बच्चे तो है नहीं, ये तो यज्ञ से उत्पन्न बच्चे हैं, आप जाइए महाराज। महाराज दशरथ जैसे बाहर गए हैं वशिष्ठ जी ने प्रणाम किया है राम जी को कि आप साक्षात भगवान हैं, अब मैं आपके गुरु का भूमिका निभाने जा रहा हूं, अब मैं आपको क्या सिखा सकता हूं, आप ही सब जानते हैं, और परिक्रमा चारों बच्चों की है। अब ये दशरथ के सामने तो नहीं कर सकता था वशिष्ठ, तो दशरथ को भेजने का पीछे ये रहस्य था कि वशिष्ठ जी उन बच्चों के स्वभाव प्रभाव उनके ऐश्वर्य उनके भगवता के गुणों को जानते थे, प्रणाम करके परिक्रमा करके और बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने एक साल में बच्चे सारा पढ़ के पूरा किया। 64 दिन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम अवंती का नगरी मतलब उज्जैन से संदीपुनी मुनि से पढ़ के वापस आए थे 64 दिन में, और यहां चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक साल में अपना गुरु की पढ़ाई पूरी किया है और बड़ी शोभा यात्रा निकली है, और शोभा यात्रा में सोने के रथ के ऊपर राम जी चढ़ के आ रहे हैं, महाराज दशरथ का रथ आगे चल रहा है और भाई सब सज धज के आ रहे हैं, बच्चे गुरुकुल से वापस आ रहे हैं, 15 साल के होने वाले हैं। अब एक निषाद बालक अपने पिता से राम की कथा सुनता था कि कितना सुंदर है राम, मन में आया मुझे राम को देखना है, एक पेड़ के पत्तों की मोजरी जूती बनाई और बांस का एक तरकस बनाया, एक कमान बनाया, तीर बनाया, और कहा मैं राम का दर्शन करना चाहता हूं। पिता ने कहा एक तो राजमहल में रहते हैं कैसे मिलेंगे, अब गुरु आश्रम में कैसे मिलेंगे, इसलिए एक जगह भगवद गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद ने भागवत में लिखा है कि राम राजकुमार है, उससे मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये ग्वाल बाल कृष्ण किसी को भी गैया चराता मिल जाता है, इसका नाम गोविंद है, ये बहुत आसानी से किसी को भी मिल जाता है, कोई ग्वाल बाल भी इसको जाके बात कर सकता है, कोई भीलनी भी बात कर सकती है, जंगली भी बात कर सकते हैं, सुलभ भगवान है। वैसे भगवान सबको सुलभ है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या चाहिए। रामायण शुरू होती है त शब्द से और पूरी होती है प शब्द से, त शब्द से शुरू होती है तपो तपो निष्ठ तपो निधि, ये जो वाल्मीकि रामायण का पहले श्लोक का पहला शब्द है ओम तप, तो तप शब्द से त और प से पूरी होती है। गायत्री मंत्र भी त से शुरू होता है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये अलग है पर तत् स्व ओम भूर्भुवः स्वः तत् तत् से शुरू होती है, तो रामायण पूरी तरह से शुरू होकर प तक पूरी होती, तो तपस्या से। और ब्रह्मा जी को सृष्टि करने से पहले दो ही शब्द सुनाई दिए तप, और भारत वर्ष का आराध्य देव नर नारायण बद्री का आश्रम में आज भी तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या की मूर्ति है, आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का जो साधन है वो है तपस्या। ये जो आप दो घंटे बैठ के एकादशी का आज दिन है, हरि वासरे, एकादशी को कहते हैं हरि वासरे, हरि का वार, हरि की तिथि है, दूसरा इसका नाम है माधव तिथि, लक्ष्मीपति की ये तिथि है, माधव तिथि भक्ति जननी जतन करी पोलन करो, ये भगवान का दिन है, इसका एकादशी के दिन व्रत रखना ये बड़े से बड़ी तपस्या है कलयुग के लोगों के लिए, ये व्रत हो जाए तो बहुत बड़ी तपस्या है। महीने में दो बार एकादशी आती है, बस फलाहार कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमने फलाहार की जगह पे ऐसा एकादशी का फीस्ट करते कि एकादशी भाग गई मतलब मैं आई थी तपस्या कराने के लिए और ये यहां तो बड़ा फीस्ट करके खा रहे हैं। तपस्या पक्का, एकादशी तपस्या है, एकादशी के दिन आप भाग्य से भगवान राम के चरित्र की कथा सुन रहे हैं, ऐसा पुण्य जीवन में बहुत मुश्किल से कथा होता है, ये आपकी तपस्या निश्चित रूप से स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो धर्म का कार्य आपका है, बहुत जीवन में कभी कोई कठिनाई आने वाली होगी उस वक्त ये आपकी रक्षा करेगा, उस वक्त ये आपकी सहायता करेगा, जहां कथा होती है उस देश का कल्याण होता है, उस भूमि का कल्याण होता है, वहां के राजा को छठा हिस्सा धर्म का पुण्य का प्राप्त होता है, और जो प्रसाद जिनका प्रसाद वितरण होता है उनको पुण्य प्राप्त होता है, ये तो सब पुण्य के भागी होते हैं। तो ये बड़ी भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमारे को यहां बैठकर भगवान राम के चरित्र को सुनने का जो है शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, तो वो जो सवारी आ रही है, तो आज बाप ने कहा बेटा आज राम जी की बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है, उनके गुरुकुल की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब वो जनता के बीच से जाएंगे, तुम जाओ, तुम्हारा भाग्य होगा तो तुम दर्शन कर पाओगे। ये छोटा सा बालक है 10-12 साल का, राम जी 15 साल के हैं, ये 12-13 साल का है, और भागता हुआ आया और छोटा सा बच्चा ऐसे कूद के और राम जी की रथ की ओर लपका, तो कुछ सिपाहियों ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन राम तो भद्र है, राम का स्वभाव बहुत सुशील है, नहीं नहीं बोला इस बच्चे को ऊपर चढ़ने दो, और बच्चे को अपने साथ में बिठाया, और मेरा मेरे लिए क्या लेके आए हो उपहार, आप क्या मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, तो उसने वो पेड़ के पत्तों का बना हुआ चप्पल दे दिया, और राम जी के चरणों में बखमल के और हीरे मोती के चप्पल थे उतार के रखे, इस बच्चे के चप्पल पहने, और उसने अपना बांस का वो बना हुआ तीर कमान दे दिया, राम जी ने सोने जड़त अपना तुरंत रख के, दशरथ को आश्चर्य लगा, महाराज दशरथ पूछते हैं राम भद्र ये कौन है, बोला ये हमारा मित्र है, और भगवान जैसे कहा राम जी ने कि ये मित्र है, दशरथ ने कहा आपका मित्र है आपको उपहार देते हैं, तो इसको भी हम एक बहुत बड़ा आज गिफ्ट दे रहे हैं, इसको श्रृंगेरपुर का राजा बना देते हैं, हमारा जो गंगा के तट का क्षेत्र है श्रृंगेरपुर उसका इसको राजा बनाते हैं, ये बालक आगे चल के निषाद गुहा बनता है राज, जो जो रामचंद्र के वनवास में के समय में रामचंद्र जिसको गले मिलते हैं, ये बचपन में यहां रामचंद्र का दर्शन करने के लिए आया था, अब जैसे सवारी आई है सबने दर्शन किया है और चारों बालक अपनी माताओं के पास फिर वापस पहुंचे हैं, अब विचार घर में चल रहा है कि इतने सुंदर बालक, इन चार के लिए चार सुंदर कन्याएं पुत्र वधु कहां मिलेंगी, इसके मैच का लड़कियां कहां मिलेंगी, ये चर्चा चल रही है, इतने देर में समाचार आया कि तपोनिष्ठ ऋषि विश्वामित्र मिलने के लिए आए हैं, महाराज दशरथ बाहर अपने गुरुजनों के साथ स्वागत के लिए गए, और साधु संत आता है तो पहले उसको पांव धुलाते हैं, उसको कहते हैं अर्घ पाद्य, पांव धुलाने को पाद्य बोलते हैं, फिर अर्घ्य हाथ धुलाने को, फिर आचमन, फिर हाथ में पानी देते हैं, और फिर आसन देते हैं, फिर जलपान कराते हैं, बड़े आदर के साथ महाराज विश्वामित्र को ऋषि को विराजमान किया है, जब सुख से बैठ गया है तो विश्वामित्र पूछते हैं महाराज दशरथ आपके राजकाज में सब कुशल मंगल है, आपकी प्रजा धर्म से चल रही है, ब्राह्मण अपना कार्य कर रहे हैं, महाराज ने कहा आप संतों की कृपा से गुरुजनों के निर्देश में सब काम सफलता से हो रहा है, आप कैसे पधारे ऋषि, हमारा सौभाग्य है, हमको सेवा का अवसर दीजिए, क्या आ गया है, विश्वामित्र ने कहा आप जैसे कुलीन रघुवंश के राजा से यही आशा थी के साधु संत ब्राह्मण की सेवा करने के लिए अनुकूल वचन आपके मुख से निकले हैं, तो सुनिए यहां सिद्ध आश्रम है पास में, ये सिद्ध आश्रम आजकल बिहार में बक्सर जहां है, ये बक्सर का क्षेत्र सिद्ध आश्रम किसी वक्त में रहा है, जहां ऋषि विश्वामित्र कहते हैं हमने अनुष्ठान कुछ किया है और उस अनुष्ठान में कुछ राक्षस आके विघ्न डाल रहे हैं, और हम आपसे अपने आपके ज्येष्ठ पुत्र बड़े बेटे राम को रक्षा के लिए ले जाना चाहते हैं, ये सुन के पहले तो महाराज दशरथ हंसते हुए कहते हैं ऋषिवर अभी 15 साल है, 16 साल में तो कवच बांधते हैं बच्चे को, क्षत्रिय को कवच बांधना शुरू करते हैं 16 साल की उम्र में, कवच बांधने के बाद युद्ध भूमि में जा सकता है, अभी तो 15 साल पूरे हुए हैं कवच भी नहीं बांधा है, ये कैसे राक्षसों से युद्ध करेगा, ये तो राजीव लोचन है, दशरथ महाराज ने कहा राजीव लोचन है, राजीव लोचन का मतलब कमल नयन है, बोला रात को असुर आते हैं, असुर आएंगे रात को और इसके आंखें हैं कमल नयन, और जैसे सूर्य अस्त होता है कमल अपने आप बंद हो जाता है, ये रात को सो जाएंगे ना, ये रात को अभी बच्चे हैं इसको नींद आएगी, ये रात को कैसे लड़ाई करेंगे, अब दशरथ को तो पिता है ना, उसका भाव तो वात्सल्य का है कि ये हमारे राजीव लोचन राम राजीव लोचन कैसे रात को जाग पाएगा, और शुरू से युद्ध, और वो कौन है, बोला मारीच है सुबाऊ है, रावण के अनुचर है, बोला ये तो बड़े भारी राक्षस है, सेना लेके मैं चलूं तो भी संभव नहीं है महाराज। ऐसे करके दो पहर मतलब दो घड़ी का मतलब 48 मिनट के लिए महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। सभा में महाराज मूर्छित है और जैसे मूर्छा खुली बोला राम दे नहीं सकता, राम चला जाएगा मेरा प्राण चला जाएगा, और प्राण चला जाएगा तो मेरी अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए बड़ा पुत्र चाहिए, वो भी घर में नहीं होगा, ये नहीं हो सकता महाराज। छोटा बेटा मांगा होता तो चलो सोच भी सकते थे, लेकिन अब नहीं दे सकते। अब विश्वामित्र थोड़ा सा उठ के रोष में कहते हैं आप राम को नहीं जानते। दशरथ कहते हम नहीं जानते हैं, 15 साल हमारे गोद में पला है, हमने खिलाया पिलाया, हम नहीं जानते हैं, आप जानते हैं। बोला मैं नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं, आपका गुरु वशिष्ठ जानता है, ऋषि जानते हैं राम कौन है। अब ये जब विश्वामित्र ने कहा, ये बहुत बड़ी बात है, एक बार एक बहुत बड़े विद्वान ने जो श्रील प्रभुपाद के विश्व भर में प्रचार के ऊपर शोध कर रहा था उसने प्रभुपाद के बहुत वरिष्ठ शिष्यों को कहा कि आप प्रभुपाद को नहीं जानते हो। तो प्रभुपाद के शिष्य ने कहा हम 10-11 साल गुरु जी के साथ रहे, चले साथ, बैठे साथ, उठे साथ, सेवा में, हम नहीं जानते, आप कैसे जानते हो। तो उस विद्वान ने कहा जब 70 साल की उम्र में आप कोई ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करोगे तब आप समझ सकते हो कि प्रभुपाद कौन था। 70 साल की उम्र में ये कार्य जो कर सकते हैं उसको पता लगेगा कि प्रभुपाद ने क्या कठिनाई देखी होगी। यू कैन नॉट नो प्रभुपाद एक्चुअली, इट्स नॉट इजी, इतना आसान काम नहीं है सर, इतना बड़ा काम। बहुत लोग आश्चर्य करते हैं कि कैसे काम हुआ। या दो जगहों पे ऐसा संकेत मिलता है, जिसने वृंदावन की जमीन कृष्ण बलराम मंदिर के लिए दी गीता शराफ, वो देवी शक्ति माता जी के पास आती थी मिलने, हमने देखा है उनको प्रभुपाद के विशेष रूप से आविर्भाव और तिरुभाव पे उनपे हम बुलाते थे वृंदावन में। एक दिन वो आई और देवी शक्ति माता जी को कहने लगी, ये 76 की बात होगी, मंदिर बन गया था 76 में, मंदिर बनने के बाद की बात है। गीता शराफ ने कहा कि मैं आपको बताती हूँ कि एक बार मैं मिलने आई श्रील प्रभुपाद जी से, तो वो बैठे थे उनके साथ बड़े बड़े उनके जो सेक्रेटरी सबको बोला आप चले जाओ, और मैं अकेली बैठी। तब मुझे कहा बेटी मैं ऊपर से आया था, कहा कि मैं ऊपर से आया था, भगवान ने भेजा था अंग्रेजी बंगाली और हिंदी में प्रचार करने के लिए, अब मेरा काम हो गया, मैं वापस जाने वाला हूं। ये उसने बहुत समय के बाद देवी शक्ति को ये 3 बातें कही। तब हम देखते हैं कि अंग्रेजी प्रचार तो पूरे पाश्चात्य देश में किया, बंगाल में मायापुर में प्रभुपाद ने सेंटर बनाए, और बॉम्बे और वृंदावन पूरा क्षेत्र जो हिंदी क्षेत्र है इसमें केंद्र बनाया, 3 जगहों पे। और बोला जैसे उन्होंने ये कहा कि मैं जाने वाला हूं, और उसके बाद 5-6 महीने में चले भी गए। तो ये प्रभुपाद के आने का कि कैसे। और एक बार तो प्रभुपाद को जब सेवा कर रहे थे बहुत बड़े वरिष्ठ भक्त उस वक्त में, तो उनको कहे कि भाई मैं तो नहीं आना चाह रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं जाओ, तुम जाओ, कलयुग में जाके क्या करूंगा। बोला भागवत कवा पूरे दुनिया के अंदर ऐसी भाषा में प्रचार करो कि दुनिया सब पढ़ सके। तो भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन से गोलोक से प्रभुपाद जी को भेजा, और फिर संन्यास लेने के बाद वो फिर वृंदावन में आके रहने लगे, लेकिन गुरुजी ने उस वृंदावन से भी कहा नहीं जाओ बाहर प्रचार करो। तो एक वृंदावन से आए दूसरे वृंदावन में, एक वृंदावन छोड़ा कृष्ण के कहने के ऊपर, दूसरा वृंदावन छोड़ा गुरुजी के कहने के ऊपर, लेकिन वृंदावन को अपने साथ ले गए, पूरी दुनिया को वृंदावन दिया, और फिर वापस अपने वृंदावन में आए और वृंदावन से ही वापस चले। ये आश्चर्य लगता है इस उम्र में ऐसा काम कैसे हो गया। और अब देखते हैं, लोगों ने देखा नहीं है, रशिया में हम जाते हैं लेकिन वहां सब जगह सभी पूजा प्रभुपाद जी की हो रही है, सभी प्रभुपाद जी का अनुयायी बने हुए हैं, लाखों लोगों पे कैसे हो गया, कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, तो भगवान अपना काम करता है। आश्चर्य लगता है ये इन चीजों का। सो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। सो क्या बात कर रहे थे विश्वामित्र की, आप नहीं जानते हो। और जब ये कहा विश्वामित्र ने तो वशिष्ठ जी उठे, अब उनका नाम लिया ना वशिष्ठ, जानता है। वशिष्ठ जी जब उठे तो विश्वामित्र ने बड़ी करुणा की दृष्टि से वशिष्ठ की ओर देखा, बोला वशिष्ठ ये राम जी आपका है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, और आप दोगे तभी हमारा कार्य होगा। आंखों में ऐसे विनती कर ली और वशिष्ठ जी ने महाराज को अंदर ले गए और जाके कहा महाराज ये विश्वामित्र इस वक्त इस धरती के ऊपर तपोनिष्ठ ऋषि है, जिसने गायत्री का साक्षात्कार दर्शन किया है, ये ब्रह्म ऋषि चाहे तो सारे असुरों को नाश कर सकता है, लेकिन ये राम को श्रेय देना चाहता है, इसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र है, वो सब राम को अर्पण करना चाहता है। इतना भी नहीं महाराज, ये हम जो बातें कर रहे थे ना, 16 साल के बच्चे होने वाले हैं, इनका विवाह कैसे होगा, ये विवाह भी करा के आएगा। महाराज दशरथ एक मिनट में बदल गए और बाहर आके कहते हैं विश्वामित्र अकेला राम नहीं, इसके साथ लक्ष्मण भी आपको देता हूं। इसको कहते हैं साधु के संग से आदमी का दिमाग एकदम बदल गया, हाँ, और 360 डिग्री पूरा ऐसे टर्न खा के आ गया। पहले नहीं दूंगा, बोले दो ले जाओ एक की बजाय। अब राम लक्ष्मण को बुलाया और कहा बेटा अब आप ऋषि विश्वामित्र के साथ जाइए, यही आपके गुरुदेव पिता माता सब है, इनकी सेवा और आज्ञा करना। तो राम जी गुरु जी को प्रणाम करके कहते माताओं से मिल के आऊं। विश्वामित्र कहता पिता ना कर रहा था, माता कहां जाने देगी, नहीं तो वहां गया तो आना मुश्किल हो जाएगा, माताओं ने रोदन किया तो फिर तो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर एक शब्द सुना, माताओं से आज्ञा लेकर आता हूं। राम जी एक बार बोलते हैं दोबारा नहीं बोलते हैं, आता हूं बोलाऊंगा तो आएगा, ये विश्वास है। राम दो बार बोलते नहीं है, दो बार तीर चलाते नहीं है, निशाने के ऊपर एक तीर निकाला बस हो गया, उसको कहते हैं राम बाण है। राम बाण मतलब जहां निशाना है वहीं जाएगा, बोलते एक बार है दोबारा उसको और देते एक बार है, फिर कभी मांगने के लिए आना नहीं पड़ता है उसके पास, वो तो बस ऐसा ही काम उनका पक्का है। तो आज माताओं के पास जब राम ने कहा कि विश्वामित्र हमें लेने आए, माताओं को याद आ गया कि जब लाला का जन्म हुआ था राम जी का, तो एक छोटा सा बट्टू ब्राह्मण आया था, वो भव शंकर भोलेनाथ आए थे, वो ब्राह्मण बन के आया था और कहा था जिस दिन विश्वामित्र इनको लेके जाएगा इनका विवाह करा के आएगा। माताओं को ये बात याद थी, वो बड़ी खुश थी कि जाने दो बेटा जल्दी जाओ, बेटा जल्दी जाओ। अब विश्वामित्र जी दोनों बालकों को साथ लिया है, आगे विश्वामित्र पीछे राम पीछे लक्ष्मण, और चले हैं अयोध्या से सरयू नदी के किनारे किनारे थोड़ा आगे चले हैं, शाम होने वाली है। राम जी ने कहा संबंध तो स्थापित होना चाहिए गुरु के साथ, भाई संबंध जब तक नहीं है तब तक तो काम होगा नहीं। तो विश्वामित्र के हृदय में वात्सल्य भाव भगवान ने प्रकट किया। विश्वामित्र ने पीछे मुड़ के देखा, बोला राम जी ये तो राजकुमार है, कितनी बार बच्चों को मां खिलाती होगी प्रेम से, अब मेरे साथ जा रहे हैं, कुछ खाने पीने का तो है नहीं। देखा तो राम जी का चेहरा थोड़ा सा उनको ऐसे लगा के भाई माता पिता के प्रेम की आवश्यकता है, तो एकदम कहते हैं राम जी आप जरा सरयू में से स्नान करके आचमन करके आ जाओ, और आके बैठ गए। बोला बेटा मैं आपको आज विद्याएं दो देने जाना हूं, बला और अति बला नाम की विद्या देने जा रहा हूं, ये विद्या एक बार आपने को मिल गई तो आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, कोई प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर तत्काल आपके मुख से निकल जाएगा, कैसी भी परिस्थिति होगी आपकी विजय होगी। तो ये दो विद्याएं देकर जैसे दीक्षा दिया, विद्या दिया तो दीक्षा दिया गुरु ने, ये संबंध स्थापित करा और राम जी को दिया और राम जी ने लक्ष्मण को दिया, तो ये फिर परंपरा ऐसे हो गई और ये तीनों आगे चले हैं। अब रात को सुलाने के समय विश्वामित्र कहते हैं गुरुकुल से, तो गुरुकुल में इसलिए बच्चों को भेजते थे कि नीचे सोना आ जाए, भूमि के ऊपर सोने का काम करने को उनको बचपन में ही आदत पड़ जाए। अभी स्कूल कोई गुरुकुल में बच्चे जाते नहीं है, अभी तो जैसे आराम से जाते हैं आते हैं, तो उनको कष्ट सहने की कोई प्रैक्टिस होती नहीं है, और कष्ट आता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं। वो तो बच्चे इतने पक्के हो गए कि आते थे गुरु आश्रम से, कैसी भी परिस्थिति में वो हमेशा सफलता को ढूंढ लेते थे। तो आज विश्वामित्र ने नीचे घास बिछा के, ऊपर चादर बिछा के, मृगशाला और दोनों बच्चों को सुलाने के लिए कहा, अब लोरी तो नहीं गा सकते हैं। तो राम जी चरण दबाने लगे विश्वामित्र के, और विश्वामित्र सो गए तो फिर राम जी के चरण लक्ष्मण दबाने लगे, और सुबह जैसे सवेले उठे हैं तो विश्वामित्र राम जी को जगाने लगे हैं। पहला दिन तो जगाया है, उसके बाद तो गुरु के बाद सोते थे, गुरु के सोने के बाद सोते थे और गुरु के उठने से पहले उठना चाहिए, लेकिन पहले दिन राजकुमार थे तो उठाया कि उठो राजीव लोचन कौशल्या जहाँ कौशल्या जन जाया, ऐसे जैसे हम अपने मंदिरों में सुबह ठाकुर को उठाते हैं, उठिष्ठ गोविंद उठो गोविंद, ऐसे बच्चों को उठाया है और स्नान करके सरयू से आगे जले हैं। तो जहां सरयू गंगा में मिलती है वहां एक तुमल ध्वनि हो रही थी। राम जी पूछते हैं गुरुदेव ये कौन सा स्थान है, ये क्या गंगा के अंदर से, मतलब ये सरयू नदी, इस नदी को कहते हैं मानस, ये मानसरोवर से निकलती है, इसको मानस कहते हैं, इसको वशिष्ठ पुत्री भी कहते हैं, ये सरयू नदी गंगा से मिल रही है। तुलसीदास ने मानस से निकलने के कारण अपने रामचरित्र का नाम रखा रामचरित्र मानस। इसका मतलब मानस से जैसे सरयू निकल के आती है, ऐसे राम का चरित्र भी मानस से आ रहा है। तो राम ये राम जी ये वो स्थान है, और आगे चले हैं तो एक स्थान आया है नदी के किनारे। राम जी ने पूछा गुरु जी ये कौन सा स्थान है, बोला बेटा ये अनंग देश है, यहां शंकर जी तपस्या कर रहे थे, यहां कामदेव ने उनको जगाना चाहा। ये उस वक्त की बात है, देवताओं के पास कोई सेनापति नहीं था और असुरों ने चारों ओर से हाहाकार मचा दी, और ये देवताओं को कहा गया जब शंकर जी का पुत्र उत्पन्न होगा, देवताओं का सेनापति बनेगा, तभी असुरों के ऊपर विजय प्राप्त होगी, लेकिन शंकर जी समाधि में बैठे हैं उनको जगाए कौन। तो देवताओं ने कामदेव के ऊपर ये काम रखा, कामदेव ने शंकर को जगाने के लिए प्रयास किया, शंकर का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव का शरीर भस्म हो गया, तो इस जगह का नाम अनंग देश हो गया। अंग जिसका अंग समाप्त हो गया। और फिर शंकर जी के जागने के बाद आगे चल के कार्तिकेय प्रकट्य होता है, और कार्तिकेय जैसे ही प्रकट हुआ तो कार्तिकेय देवताओं का सेनापति हो गया, तब से असुरों के संहार में फिर समस्याओं का समाधान हो गया। तो ये अनंग देश है, और वहां से आगे चलते हैं तो दो उजड़े हुए वन मिले। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये कौन सा स्थान है, विश्वामित्र कहते हैं ये मलाद और करुष नाम के दो बहु स्थान है। इसको मलाद इसलिए कहते हैं कि इंद्र ने ब्रह्म हत्या का यहां धोया था, तो उन्होंने अपना मल यहां धो के साफ किया था, ये मलाद है, ये कुरुष है, ये बड़े जनपद थे, इंद्र ने बड़ा इनको आशीर्वाद दिया था। लेकिन आज सुनंद यक्ष की एक पत्नी है जो पहले यक्षिणी थी, लेकिन अब उसको ऋषियों ने श्राप दिया है, वो राक्षसी बन गई है, उसका नाम ताटका है। तो ताटका पहले यक्ष थी और फिर राक्षसी ऋषियों के श्राप से बनी है, इसने यहां इन दोनों जनपदों को उजाड़ रख के रख दिया है, यहां ऋषियों का हत्या कर दिया है, बेटा अब आप इस ताटका का उद्धार करो। तो राम जी संकोच करने लगे, पहला बाण उठाना है हाथ में और वो भी किसी स्त्री के ऊपर चलाना है, तो राम जी संकोच करने लगे। विश्वामित्र ने कहा बेटा भगवान विष्णु ने भृगु की पत्नी को अपने हाथ से मारा था जब वो पूरे विश्व को विनाश करना चाह रही थी, ऐसे इंद्र के द्वारा भी स्त्री की हत्या हुई है जब आवश्यकता पड़ी थी, तो आपको ये जन कल्याण के लिए कार्य करना ही चाहिए। और राम जी ने अपने धनुष को उठाया है, टंकार की है। विश्वामित्र तो पहले राज ऋषि हैं, राजा रह चुके हैं और अस्त्र शस्त्र सब जानते हैं। बड़े प्रसन्न हो गए रामचंद्र के, केवल धनुष के ऊपर प्रत्यंच चढ़ा चढ़ा चढ़ाने को देखकर प्रसन्न हो गए। और चंकार धनुष की है, काले पर्वत की तरह कोई पहाड़ चलता आए ऐसे राक्षसी ताटका आने लगी। और रावण जी अनुसंधान बाण का कर रहे हैं लेकिन थोड़ा झिझक रहे हैं। राम जी के अवतार में पहले ताटका को मारना पड़ रहा है और कृष्ण अवतार में पहले पूतना आएगी, तो ये दोनों को पहले स्त्री वध करना पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं ये दोनों अविद्या है, जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा तब तक भगवान के रास्ते में आगे समझना आसान नहीं रहेगा। भगवान ने पूतना को आंखें बंद करके मारा, आंखें खोली नहीं। बोला क्यों? बोला योगेश्वर है, इसको आंखें खोल के मारने की जरूरत नहीं है। बोले राम जी ने खुली आंखों से मारा, क्यों? बोले मर्यादा पुरुषोत्तम देख के फिर मारते हैं, कौन मारने योग्य है कौन नहीं है। खुली आंखों से मारा है और एक बाण से एक हाथ काटा, दूसरे बाण से दूसरा हाथ काटा। राम जी अभी भी सोच रहे थे कि भाग के चली जाए तो अच्छा ही हुआ, वध करने से बच जाऊं। दोनों जब बाजू कटे तो लक्ष्मण ने कहा मैं भी कुछ करूं, दो कान और नाक काटे। बोला भैया देख लो, इस काम में मैं इतना होशियार हूं, जहां भी जरूरत पड़ेगी नाक कान में काट लूंगा, आगे जरूरत पड़ेगी ना। तो उसका एक्सपेरिमेंट यहां कर रहा था। और फिर जब विश्वामित्र ने कहा बेटा इसका उद्धार करो, उस वक्त राम जी ने एक बाण चलाया हृदय में, ताटका धड़ाम से नीचे गिरी है। और बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं विश्वामित्र संतुष्ट अस्मि, मैं संतुष्ट हो गया बेटा, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। ये आपकी परीक्षा थी, मैंने सोचा कि अगर आप ताटिका का वध कर पाओगे तो आगे असुरों का संहार कर पाओगे, अब जल्दी स्नान करके आ जाओ। अब रामचंद्र स्नान करके बैठे हैं तो विश्वामित्र कहते हैं मैंने जो जीवन भर में तपस्या करके शस्त्र अस्त्र, एक अस्त्र एक शस्त्र दो शब्द है। शस्त्र का मतलब है वेपन्स, जैसे तलवार है, तीर कमान है, भाला है, इसको बोलते हैं शस्त्र। और अस्त्र कहते हैं जो मंत्रों से आवाहन होते हैं, वो फिजिकल नहीं दिखते हैं, उनको अस्त्र कहते हैं। तो विश्वामित्र के पास कोई 49-50 अस्त्रों का नाम है वाल्मीकि रामायण में, उनको बुला के और राम को देने लगा। और कहते हैं वायवान अस्त्र आ जाए, अग्नि अस्त्र आ जाए, पर्वत अस्त्र आ जाए, ब्रह्म अस्त्र आ जाए, पशुपति अस्त्र आ जाए। वो सारे अस्त्र मूर्तिमान होके खड़े हो जाएं और राम सिंह को प्रणाम करें। और आज अस्त्र सारे इतने प्रसन्न हैं, अस्त्र कह रहे हैं ये राजा महाराजा हमको जब प्राप्त करते हैं तो क्रूरता से किसी को मारने के काम लाते हैं, आज ऋषि के पास ये अस्त्र आए हैं तो ये भगवान को अर्पण कर रहे हैं। अस्त्र आज धन्य हो गए कि किसी को मारने के काम नहीं आ रहे हैं लेकिन भगवान के चरणों में अर्पण हो रहे हैं। तो अस्त्र बड़े प्रसन्न होकर राम जी को प्रणाम करते हैं और राम जी कहते हैं आप सब अपने अपने स्थान पे जाकर रहो, जब मैं आपकी स्मृति करके आपका आह्वान करूं तब आप प्रकट हो जाना। तो ऐसे राम जी को सारे अस्त्र शस्त्र दिव्य दिए हैं विश्वामित्र ने प्रसन्न होके, और यहां सिद्ध आश्रम आ गया। बहुत रमणीक, विश्वामित्र ने कहा ये अपना आश्रम है बेटा सिद्ध। राम जी को सीधे हाथ में लिया, लक्ष्मण को उल्टे हाथ में पकड़ा है। और विश्वामित्र जैसे प्रवेश कर रहे हैं शिष्यगण अंदर से सामने आए, गुरु जी का स्वागत किया और राम लक्ष्मण को बड़े प्रेम से ले गए। जलपान करने के बाद रात को विश्राम करके सुबह उठ के राम जी प्रणाम करके कहते हैं गुरुदेव अब आप यज्ञ का अनुष्ठान करके बैठ जाइए, आप दीक्षा यज्ञ की लीजिए, बैठिए यज्ञ कीजिए, हम रक्षा के लिए खड़े हैं, बताइए कौन आएंगे। बोला ये असुर आते हैं और ऊपर से ही रत पीप कुछ फेंकते हैं, हाड़ मांस कुछ भी फेंक देते हैं और विघन डालते हैं। राम जी ने कहा आप निश्चित रहिए गुरु जी, हम अब 6 दिन यहां सावधानी से दिन रात पहरा देंगे। यज्ञ शुरू हुआ, 5 दिन पूरे हुए, कुछ नहीं हुआ। 6ठे दिन सुबह राम जी कहते हैं लक्ष्मण सुमंत्रा नंदन आज सावधान रहना, सोना नहीं। ये एक शब्द को लक्ष्मण ने महामंत्र मान लिया, जीवन भर में कहा कि असावधान नहीं रहना, सोना भी नहीं है अभी, गुरु जी का एक शब्द बड़े भाई का सुन लिया और आप छठे दिन मारी सुबाहु अपने सारे अनुचरों को लेकर आकाश मार्ग से आए हैं और राम जी ने अपने बाहों से ऊपर चक्कर बनाया है, जो ऐसे चक्कर घूम रहा है, वो जो निकट आए हैं तो देखते हैं ये चक्कर घूम रहा है, अंदर जाएं कैसे, नजदीक जा नहीं पा रहे, यज्ञ के नजदीक आने के लिए उनके पास समय नहीं है, परेशान हो गए। वो आपस में वहां से आ रहे थे तो किसी ने कहा मैं लघुशंका जाना चाहता हूं, एक ने कहा बोला क्या करे, वो यहां करे यज्ञ में करना, जाना ही तो यज्ञ विध्वंस करने जा रहे हैं ना। अब वो नजदीक आ नहीं पा रहे, बाण देख के वो कहते पेट फट रहा है, कहां जाऊं, तुमने कहा था यहां करना है, ये तो ऊपर चक्कर घूम रहा है, हम तो परेशान हो गए सारे, उधर असुर परेशान हो गए। राम जी ने मरीच की ओर देखा और एक मानव नाम का बाण है जो मनु ने तपस्या करके प्राप्त किया था, जो बाण मारता नहीं है लेकिन दूर जाके फेंकता है, आज मारीच की छाती में मानव बाण लगा और मारीच 1000 किलोमीटर उड़ा है, और हिंद महासागर के अंदर जाके गिरा है, जहां गिरा है वहां छोटा द्वीप बन गया और उस द्वीप का नाम मारीच हो गया, क्योंकि मारीच वहां गिरा था, वो फिर समय के साथ नाम बदलते बदलते अब मॉरिशस हो गया, मारीच मॉरिशस में जाके गिरा था, और इसलिए मॉरिशस वाले अपने घर के अंदर हनुमान का मंदिर सब घर के अंदर है, उनको डर लगता है कहीं मरीच आना जाए, हनुमान बाहर बैठा, हर घर में हनुमान है, कोई भी घर होगा एक हनुमान का मंदिर बाहर होगा, 2 लाल झंडे लगे होंगे, ये पहचान है उनकी। और मारीच को तो भगवान ने मारा नहीं, मारीच है मृग तृष्णा, जो दिखता है वो नहीं होता है, और आदमी चाहता है मिल जाएगा, मिलता नहीं है, और मारीच को तो नहीं मारा, सुबाहु को तो भगवान ने बाण से ही मार के धराशायी कर दिया। सुबाहु का मतलब है जिसके बाएं अच्छी है, अच्छे बाजू है, काम कर सकता है लेकिन निकम्मा कुछ नहीं करता है, दूसरे लोगों को दुख देता है, उसकी बाएं रखने की जरूरत क्या है, उसका विनाश हो गया। यज्ञ पूरा हुआ और महाराज विश्वामित्र कहते हैं परितुष्टो अस्मि, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया, आज ब्रह्म ऋषियों के यज्ञ की आपने रक्षा कर दी। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी थी और हम आज संतुष्ट हो गए बेटा, आप विश्राम करो। दूसरे दिन सुबह राम जी प्रणाम करने के लिए गए तो ऐसे नहीं कहते हैं दशरथ नंदन राम हूं, हम आपके किंकर हैं, राम राम किंकर आपका आया है, आज्ञा कीजिए गुरुदेव। किंकर का अर्थ होता है किम करो थी, क्या करें आज्ञा कीजिए, हम क्या करें आज्ञा कीजिए, संस्कृत में कहते हैं किंकर, किम करो मी किंकर, तो किंकर का मतलब नौकर नहीं होता है लेकिन आज्ञाकारी सेवक होता है। तो उस वक्त विश्वामित्र ने कहा शिक्षा तो इनको गुरु वशिष्ठ ने दे दी, अस्त्र शस्त्र तो हमने इनको सब दे दिया, इनके जीवन में परीक्षा भी होगी शिक्षा भी हो गई, अब थोड़ा माधुर्य भर देना चाहिए, लेकिन अब नौजवान बच्चे हैं इसको कैसे बताएं। तब वो कहते हैं बेटा देखो ये जनकपुर से एक निमंत्रण आया है, वहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है धनुष, और उस धनुष यज्ञ में एक बड़ा अद्भुत धनुष है महाराज जनक के पास, सारे राजकुमार और राजाओं को निमंत्रण दिया है, तो आप उस धनुष को देखना चाहोगे बेटा। तो राम जी के मन में तो उत्कंठा है कि धनुष देखना चाहिए, लेकिन जब सुना कि राजकुमार सब आए हैं सबको निमंत्रण गया है तो हम भी तो राजकुमार हैं अयोध्या के, हमारे को तो निमंत्रण आया नहीं है, तो अगर हमको निमंत्रण नहीं आया है तो कैसे जाए। तो विश्वामित्र उनके मन के भाव को समझ गए, कहा बेटा गुरु के साथ शिष्य जाए उसको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, आप हमारे साथ चलिए। अब दूसरे दिन सिद्ध आश्रम से महाराज विश्वामित्र ऋषि के साथ उनके शिष्य मंडली और साथ में ये 2 बालक राम लक्ष्मण चले हैं। आगे एक महानगर आता है, शाम को वहां रुके हैं। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये कौन सा स्थान है। अब विश्वामित्र कहता है ये स्थान हमारा जन्म स्थान है, यहां हमारे पूर्वज महाराज कुश का राज था, उनका बेटा कुशनाभ हुआ और कुशनाभ का बेटा गाधी हुआ और गाधी का बेटा मैं विश्वामित्र हुआ हूं। तो अपनी पूरी कथा पूर्वजों की बताई कि कैसे हमारी उत्पत्ति हुई, कैसे हम पैदा हुए हैं और वहां से आगे निकले हैं तो गंगा जी को क्रॉस करना पड़ा। गंगा को पार करते समय राम जी ने पूछा ये कौन सी नदी, गुरुदेव कहाँ से आती है। तो वाल्मीकि रामायण में कोई 10-15 अध्यायों में गंगा के अवतरण की कथा है। ये गंगा धरती के ऊपर कैसे आई इसका पूरा वर्णन है कि महाराज सगर का विवाह हुआ संपाति गरुड़ की बहन के साथ। उससे 60,000 पुत्र हुए सगर के और दूसरी पत्नी से एक पुत्र हुआ अंजसमंस। और महाराज सगर के घोड़े को चुरा के ले गया कोई भी, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। 60,000 पुत्रों ने धरती को खोदा, सगर सागर बन गए। और कपिल आश्रम में घोड़े को देखा, क्रोध करके कपिल की ओर देखा, कपिल की आंखें खुली, 60,000 पुत्र सगर के भस्म हो गए। और जो बेटा एक था वो तो बड़ा तपस्वी था। हमारे भारतीय संस्कृति में एक जड़ भरत है, एक उत्कल है, द्रु महाराज का बेटा, द्रु वंश में द्रु का पुत्र उत्कल है, उसने राज नहीं लिया, वो भी ऐसे अलग रहना चाहा। एक ये महाराज सगर का बेटा है, इसने कभी राजकाज नहीं करना चाहिए, ऐसा रहना चाहते, कोई पहचाने नहीं हमारे से भगवान की भक्ति में। तो चार ऐसे उदाहरण है। लेकिन उनका बेटा अंशुमान, अंजसमस का बेटा अंशुमान, वो घोड़ा ले आया कपिल देव से और कपिल देव को प्रसन्न करके कहा कि ये हमारे ताऊ जी, इनका यहां ध्यान शरीर छूट गया, इनका उद्धार कैसे होगा। बेटा गंगा धरती पे आएगी तो इनका उद्धार होगा। अब अंशुमान वापस आए हैं, अंशुमान राज छोड़ के अपने बेटे दिलीप को दिया है गंगा के अवतार के लिए, तपस्या करने गए हैं। अंशुमान के लिए गंगा नहीं आई, दिलीप तपस्या करने चले गए। दिलीप की तपस्या से गंगा नहीं आई तो भागीरथ दिलीप का बेटे ने कहा लगता है कि पहले राज करके फिर तपस्या करने गए, इसलिए गंगा नहीं आती है। और मंत्रियों आप राज को संभालने, पहले हम तपस्या करेंगे, गंगा आएगी तब आके राज करेंगे। तो भागीरथ ने यह परिवर्तन किया और तपस्या करने गंगोत्री चले गए और गंगा प्रकट हो गई। अब गंगा एक तो हमको दिखता है ये पानी की तरह बहती है, ये तो आदि भौतिक रूप है गंगा का। देवी के रूप में गंगा देवी है, मगरमच्छ उसकी सवारी है। और उस देवी ने तो शांतनु से विवाह किया, भीष्म उसका पुत्र भी पैदा हुआ, लेकिन वैसे गंगा ब्रह्म द्रव्य भगवान के चरणों से निकला हुआ है। तो आज गंगा देवी प्रकट होकर कहती है भागीरथ आपके तीन पीढ़ियों से, आपकी तीन पीढ़ियों की तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन मैं धरती पे आऊंगी तो मेरा वेग इतना तेज है मैं पाताल में चली जाऊंगी, आपका काम तो होगा नहीं, कौन मुझे धारण करेगा। और दूसरा जब पापी लोग मुझमें स्नान करेंगे तो मेरा पाप कौन धोएगा। भागीरथ ने कहा मैं व्यवस्था करता हूं। माता भगवान शंकर को प्रसन्न किया, शंकर ने कहा गंगा मां को कहो मैं आपको धारण कर लूंगा मेरी जटाओं में। और ऋषियों ने कहा गंगा माता को कहो हमारे हृदय में हरि विराजमान होते हैं और हम जब स्नान करेंगे तो आपका सब पाप हरण कर लेंगे, आप पवित्र हो जाओगी। आज गंगा का फिर आह्वान किया है, भागीरथ के आह्वान के ऊपर गंगा जब उतर के आई है तो कहा शंकर जी आपको जटाओं में धारण करेंगे और ये ऋषि आपके किनारे पे रहेंगे, आप में रोज स्नान करके आपके सारे पाप धो देंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण छोटे से बच्चे थे तो अपने घर में देखे माता जी अपनी माँ यशोदा कचौरियां बना रही है, मटरी बना रही है, सूखा प्रसाद बना रही है। तो श्री कृष्ण पूछते हैं मैया आज ये सब मिठाइयां क्यों बन रही हैं, ये सब नमकीन क्यों बन रहे हैं। बोला बेटा आपका पिताजी कहते हैं तीर्थराज प्रयागराज दर्शन करने जाना है। अच्छा मैया प्रयागराज चलेंगे, ठीक है। भगवान तो भगवान है, सभी तीर्थ वहीं प्रकट कर लेते हैं। दूसरे दिन सुबह नंद बाबा स्नान करने के लिए पावन सरोवर गए नंद गांव में, तो स्नान करते हुए देखें, स्नान करने से पहले के सामने कोई बहुत प्रकाश आया है और प्रकाश की ओर देखा तो एक व्यक्ति दिख रहा है और वो पावन सरोवर में स्नान कर रहा है और स्नान करके बाहर निकला है। तो नंद बाबा ने जाके प्रणाम किया है कि आप कोई देवता यहाँ पधारे हैं, आपको मेरा प्रणाम है, मैं यहाँ का नंद, मेरा नाम है, ये नंद गांव में मैं यहाँ सेवा, मेरी सेवा है, आप बोलिए कौन है, कैसे पधारे, आइए हमको आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त कराइए। वो कहते हैं मैं तीर्थराज प्रयाग हूं, बहुत पापी लोग रोज मुझ में स्नान करते हैं और सुबह सवेरे मैं पावन सरोवर में स्नान करके अपने आप को पवित्र करके जाता हूं। नंद बाबा ने प्रणाम किया, घर में आके यशोदा को कहा ये सारी मिठाइयां बांट दो। बोला क्यों? बोला पावन सरोवर नहीं जाओ ना, वो प्रयाग नहीं जाना है, वो प्रयागराज जाके क्या करें, वो तो यही स्नान करने आता है रोज, वो तो सुबह सुबह यही स्नान करने आ जाता है, तो उधर जाके हम क्या करेंगे। तो गंगा जी के किनारे पे साधु संत रहते हैं तो गंगा जी पवित्र हो जाती है। साधु कैसे पवित्र करते हैं? बोला साधु के हरि के और हरिदास के हृदय में हरि रहता है, जहां भगवान रहता है तो सब कुछ अपने आप पवित्र हो जाता है। तो आज गंगा जी आई है और शंकर जी की जटाओं में गंगा जी जैसे उतरी है, शंकर जी का नाम हो गया गंगाधर, एक नाम शंकर का है गंगाधर। और भोले बाबा को मन में आया कि थोड़ी देर जटाओं में गंगा को रोक लेते हैं, और गंगा को लगा मेरा वेग कैसे शंकर पकड़ पाएगा, तो थोड़ी देर के लिए गंगा शंकर की जटाओं में घूम रही है। भागीरथ कह रहा है महाराज तीन पीढ़ियों की तपस्या से आई है, अब इसको उतार ही दीजिए। तो फिर शंकर जी ने गंगा को वहां से आगे भागीरथ का रथ चलाए और रथ के पीछे गंगा चली है, जहां से रथ गया है वहां गंगा की धारा चली है। और चलते चलते जब बंगाल में पहुंची है तो एक ऋषि जानू ऋषि बैठा था, उसका पूजा का सामग्री गंगा बहा के चली गई, जानू ऋषि ने ऐसे लेके गंगा को पी लिया, भागीरथ पीछे देखे गंगा गुम। अरे इतनी सारी परिश्रम के बाद गंगा को धरती पे लाए और फिर गंगा कहां चली गई। जानू ऋषि को कहते हैं हे महाराज आपको प्रणाम है, ये हम गंगा को धरती पे लाए थे। बोला हाँ वो मेरा सामान बहा के ले जा रही थी, मैंने पी ली। अरे महाराज कृपा करके ये दे दो, हमारे वहां 60,000 ताऊ का हमारे को उधार करना है और धरती गंगा धरती के ऊपर आई है, ये तो देवलोक वालों के लिए भी दुर्लभ है। तो जाने ऋषि ने अपनी पुत्री के रूप में गंगा को प्रकट किया, इसलिए गंगा का नाम बंगाल में जाह्नवी है, जाह्नवी गंगा का नाम उस क्षेत्र में है जहां जानू ऋषि ने उसको प्रकट किया। ऐसे वाल्मीकि जी ने बहुत लंबी गंगा जी की कथा राम लक्ष्मण को, और उसके बाद आगे चले हैं तो एक आश्रम बहुत सोना पड़ा था, उस आश्रम के पास पहुंचे हैं तो राम जी ने कहा गुरुदेव ये कौन सा सोना आश्रम है। बोला बेटा ये बहुत बड़ा प्राचीन महाराज करके गौतम स्नान करने गया और इंद्र वापस आ गया। अब अहल्या ने इंद्र को पहचाना कि गौतम के वेश में नहीं पहचाना, ये तो पता नहीं लगाता है श्लोकों से, लेकिन ऐसे माना जाता है कि अहल्या इंद्र को पहचान गई, लेकिन फिर भी इंद्र के सहवास के कारण इंद्र बाहर निकला तो सामने से गौतम आ गया। उसने कहा दुष्ट कुकर्मी लंपट शराप दिया तेरा सारा शरीर योनि हो जाए। अब इंद्र हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है महाराज क्षमा करो हमको, तो सारे शरीर के ऊपर आंखें बन जाएं। और इंद्र तो यहां से गया लेकिन अहल्या को कहा तुम पत्थर बन जाओ दुष्टा कुलटा। और तब से यहां ये गौतम की स्त्री पत्थर बन गई है। श्री रामचंद्र आप इस निस्साधन का, भगवान जब कल्याण करते हैं तो कोई साधन वाले का नहीं करते, निस्साधन कोई पत्थर क्या साधन कर सकता है, अहल्या पत्थर बन गई। लेकिन गुरु विश्वामित्र ने कहा बेटा राम भद्र इनका स्पर्श करके इनका उद्धार करो। तो स्पर्श करने से पहले चरणों की धूली उड़ी और धूली जैसे पत्थर को लगी है, अहल्या प्रकट हो गई। अहल्या प्रकट हो गई, राम जी को प्रणाम किया है, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया है। तब तक गौतम ऋषि तपस्या करने गए थे, प्रकट हो गए। गौतम ने अहल्या को फिर स्वीकार कर लिया, और भगवान रामचंद्र, अब भगवान तो हम कह रहे हैं लेकिन वो तो रामचंद्र को अभी विश्वामित्र के शिष्य, उन्होंने बड़ा कल्याण का कार्य किया है, तो निस्साधन का भगवान उद्धार करते हैं। कुछ साधन, साधन के साथ बुरे साधन वाली कुब्जा जो कंस को जाके अंगराग लगाती थी, उसको भी कृष्ण ने दूर से बुला के सुंदरी और उसको सुंदर बना दिया। तो जब निस्साधन और कुसाधन का उद्धार करते हैं तो कोई साधन करे, भगवान का नाम जपे, हरि कथा सुने, तो उसके उद्धार में कोई फिर रह जाती है, शंका रह जाती है क्या? जब पत्थर का उद्धार कर सकते हैं तो चलता फिरता मानव अगर भगवान के नाम का उच्चारण करे तो उसका कल्याण नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहां से आगे जैसे निकले हैं तो अयोध्या की और सारी जनकपुर की सीमा आती। ये जनकपुर की सीमा, जनकपुर जो आज जिसका नाम है वो इस वक्त नेपाल में, और महाराज जनक की राजधानी का कुछ भाग अभी बिहार में है, सीतामढ़ी, जहां से यज्ञ के शोधन करते हुए सीता प्रकट हुई थी। वो खड्डा जो बन गया था वो लोगों ने संभाल के रखा, वहां से मिट्टी उठा उठाई, अभी इस हाल से बड़ा तालाब बन गया। उस तालाब को कहते हैं, आज भी उसका नाम है सीतामढ़ी, और वहां मंदिर बना हुआ है माता किशोरी का, प्रकट सीता का स्थल है वो। और वहां से 40-50 किलोमीटर आगे जाएंगे तो नेपाल में प्रवेश करेंगे तो जनकपुर आएगा। तो 25-30 किलोमीटर नेपाल के अंदर जनकपुर का राज है पुराना। तो ये पूरा क्षेत्र जो मिथिला क्षेत्र, महाराज जनक का मिथिला, मिथिलापुरी, ये पूरा क्षेत्र लंबा है, आधा भारत में है और बहुत सा कुछ टुकड़ा जो है वो नेपाल में है। तो जनकपुर की सीमा पे जैसे आए हैं, उद्यान में रुके हैं महाराज जनक अपने ऋत्विज ऋषि शतानंद के साथ विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए आए हैं। लेकिन जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया, लेकिन दो बालकों को देखा, गुरुदेव ये तो बालक ऋषि नकुमार नहीं दिख रहे, ये तो सुंदर क्षत्रिय, हाथों के ऊपर प्रत्यंजा के निशान है, ये कौन है आपके पास? ओ विश्वामित्र कहते हैं, ये दशरथ नंदन राम लक्ष्मण हमारे ब्रह्म ऋषियों के यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, बड़े बड़े भारी राक्षसों का उद्धार किया और हमारे रक्ष की रक्षा की है, यज्ञ की रक्षा की है, और अब ये आपके धनुष यज्ञ में धनुष का दर्शन करने के लिए इनकी उत्कंठा है यहां आए हैं। और उस वक्त विश्वामित्र ने कहा, आते आते गौतम ऋषि के आश्रम में अहल्या जो पत्थर बन गई थी उसको प्राण देकर जीवित कर दिया। ये सुनकर शतानंद जो गौतम का बड़ा बेटा जनक का पुरोहित है, आंखों में आंसू आए, बोला गुरु जी दोबारा बताइए तो क्या कह रहे हैं? बोला आपकी माता जीवित हुई, आपके पिता आए, दोनों फिर सुख से रह रहे हैं आश्रम में। शतानंद गदगद होके विश्वामित्र की पूरी कथा बता रहे हैं राम लक्ष्मण को और महाराज जनक को। तो ये विश्वामित्र गाधी का पुत्र राजा था, राजा, ये राजकुल का राजा था, इसकी उत्पत्ति बड़ी अद्भुत उत्पत्ति है। इसकी उत्पत्ति परशुराम के साथ, परशुराम और विश्वामित्र, परशुराम का पिता जमदग्नि और जमदग्नि की माता, जमदग्नि माता विश्वामित्र की बहन है, इसका नाम आएगा अभी आपको बताते हैं कथा में। वो कथा क्या बता रहे हैं, कथा बता रहे हैं तो ये बहुत बड़े राजा थे, एक बार अपनी सेना के साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए और महाराज वशिष्ठ ने इस राजा का आतिथ्य सत्कार ऐसे किया कि राज छप्पन भोग खिला दिए, राजा के रहने की व्यवस्था कर ली। विश्वामित्र को आश्चर्य लगा कि इस ऋषि के पास कुछ भी नहीं है, ऐसी व्यवस्था कैसे कर ली फाइव स्टार? पूछा, बोला ये नंदनी गाय हमारे पास है, ये सब इच्छा पूर्ण करने वाली है। इसने सबके लिए भोजन की व्यवस्था की और आवास रहवास सब कर लिया। विश्वामित्र राजा था, बोला ये गाय हमारे को राजा को चाहिए। आप ऋषि राज गाय को क्या करोगे? असल में जब खीर सागर के मंथन से कामधेनु गाय निकली थी तो गाय ऋषियों को दी गई। तीन चीजें मुख्य निकली हैं, 14 रत्न निकले हैं समुद्र मंथन से, उसमें तीन मुख्य है। एक है कामधेनु गाय, जो ऋषियों को दी गई, जो धर्म का अनुष्ठान करेंगे तब संसार सुखी रहेगा, तो गाय ऋषियों के पास रहती है और जो गाय रखते हैं वो ऋषि होते हैं। पहले सब लोगों के घर में गाय होती थी, वो ऋषि होते थे, उनका जीवन ऋषि जैसा होता था, क्योंकि गाय का एक तो खाने के लिए गाय का दूध घी दही वो मिलता था, फिर गाय की रज रोज मिलती थी, गाय का रोज गोबर उठाने को मिलता था और वही ईंधन के काम आता था। बड़ा वो संस्कृति थी जिसकी एकानामी में, वैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण गोरक्षा के आचार्य हैं और बलराम जो है कृषि आचार्य हैं, वो अपना हल उठा के आए थे, वो कृषि आचार्य हैं, भूमि का शोधन करने का काम करो और गाय की रक्षा करो। ये दो चीजें जहां होगी, जहां गाय और भूमि के सेवन होगा, वहां गोपाल का दर्शन होगा। और हर एक आदमी चाहता है कि जीवन हमारा हरा भरा हो। अरे भाई, हरा रंग कैसे बनता है? हरा रंग बनता है जब नीला और पीला आपस में मिलता है, ब्लू और येलो से हरा रंग बनता है। अरे आपके जीवन में हरा भरा होना है तो गोरी राधिका और नीले श्याम को विराजमान कर लो, आपका जीवन हरा भरा हो जाएगा। तो राधा कृष्ण आपके जीवन को हरा भरा कर देंगे। और ये कृषि, कहीं भी आपको भगवान यहां भेजा है, कुछ धन अर्जन किया है, तो जहां आपके पूर्वजों का जहां स्थान है वहां कुछ भूमि का टुकड़ा लेके रख दो। आने वाली पीढ़ी 50-100 साल के बाद जिसके पास अपनी धरती होगी, थोड़ा टुकड़ा और गाय का एक पाव होगा, पशु वही कुछ उगाएगा खाएगा, बाकी लोगों के लिए प्लास्टिक तो नहीं खाएंगे, सब प्लास्टिक प्लास्टिक का दुनिया बन गई है, खाना पीना मुश्किल हो जाएगा, दुनिया बदलने वाली है आने वाले 50 साल में, इसलिए पूर्वजों अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अभी से योजना बना के जाओ। धरती होगी तो सुखी रहोगे, ये धरती हमारी मूल माता है, इस माता को बड़े प्रेम से जिन्हें पूजा है वो सुखी रहा है। सो विश्वामित्र गाय लेने के लिए जबरदस्ती करने लगे, तो पकड़ के ले जाने लगे, तो गाय ने ही पूछा कि ऋषि वशिष्ठ महाराज, क्या आपने इनको गाय मुझे दे दिया है या जबरदस्ती ले जा रहा है? बोला ये आपको अपनी इच्छा से ले जा रहा है, हमने नहीं दिया है। बोला फिर हम अपनी रक्षा करें? हाँ जी माता, आप अपनी इच्छा से अपनी रक्षा करो। अब वो कामधेनु जो हलवा पूरी खिला सकती है, वो बमगोले भी बना सकती है, और उसने सेना बना दी अपनी, और ऐसी भयंकर सेना बनाई, विश्वामित्र की सेना हार गई, विश्वामित्र वापस चला गया राज में, और राज में जाने के बाद अपने बेटों को बोला तुम राज करो, अब मेरे को राज नहीं करना है, मैं तपस्या करूंगा और तपस्या करके मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण करूंगा। अब राज ऋषि हो गया। जब अस्त्र शस्त्र सब हाथ में आ गए, फिर वशिष्ठ के ऊपर आक्रमण किया, और वशिष्ठ के ऊपर आक्रमण किया अस्त्र शस्त्रों से, वशिष्ठ जी कुछ नहीं किया, अपना ब्रह्म दंड ऐसे सामने रखा, सारे अस्त्र आए उधर गिरे, कुछ भी नहीं हुआ वशिष्ठ का। बहुत बड़ा क्रोध आया, कहता है धिक्कार है राज ऋषि तो को, अरे ऋषि तो ब्रह्म ऋषि होते हैं, अब मैं ब्रह्म ऋषि बन के दिखाऊंगा। और विश्वामित्र जी तपस्या करने गए, फिर मैनिका ने आके विश्वामित्र की तपस्या का भंग किया, और शकुंतला का जन्म हुआ, और शकुंतला आके जाके दुष्यंत से विवाह करेगी, और महाराज वो भरत पैदा होंगे जिसके नाम से अर्जुन को भरतवंशी कहते हैं। ये तीन भरत हमारे वैदिक संस्कृति में है, एक भरत रामचंद्र का भाई, वो तो बहुत बड़ा भागवत पुरुष है, एक भरत महाराज ऋषभदेव का बेटा जिसके नाम से पृथ्वी का नाम भारतवर्ष हुआ, और एक भरत दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र जो 5 साल का शेर का मुंह खोल के कहता था दांत गिनना है मुंह खोलो, और अकेला लड़ाई करता था, बड़े यज्ञ किए पूरे गंगोत्री से लेके और प्रयाग तक, और गंगोत्री से गंगा सागर तक और जमुनोत्री से प्रयाग तक, और उस महाराज भरत के नाम से पांडवों और कौरवों को भरतवंशी कहते हैं। तो ये महाराज, और मेनका के तप भंग किया, फिर भी एक दिन वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मारा विश्वामित्र ने। एक दिन विश्वामित्र खंजर हाथ में लेकर छुरा वशिष्ठ को मारने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा था। संध्या का काल, शाम का समय था, पूर्णिमा का चंद्रमा निकला। अरुंधति वशिष्ठ के पास उनकी पत्नी देवहूति की बेटी बैठी थी। वशिष्ठ जी का एक ही बच्चा अभी बचा हुआ है, बेटा था सुयज्ञ, वो महाराज दशरथ के पुरोहितों में आता है, एक बेटा वशिष्ठ जी का, जिसका वर्णन आएगा, राम जी उसको सेवा दे के जाएंगे वनवास जाने से पहले। सो वशिष्ठ जी चंद्रमा को देख के शिष्य और अरुंधति कहते हैं, देखो तो कितना सुंदर पूर्णिमा का चंद्र निकला। वशिष्ठ कहता है, ये चंद्रमा नहीं, आज विश्वामित्र की तपस्या का चंद्रमा अस्त होता ही नहीं है। ये जब सुना विश्वामित्र ने कि जिसको मैं मारने आया हूं वो मेरी तपस्या की प्रशंसा कर रहा है, ऊपर से कूदा और छुरे को फेंक कर प्रणाम करके कहा, मैं आपके शरण में आया हूं, आप मेरे को क्षमा करने। और उस वक्त वशिष्ठ ने कहा, वे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आओ और गले मिलो। बोला, आज तक राज ऋषि कहते थे, आज ब्रह्म ऋषि? बोला, आज अहंकार आपका चला गया, आज आप में निम्रता आ गई, आज आप ब्रह्म ऋषि हो। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होके आज विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि का पद दे दिया है। ये सारी कथा शतानंद ने बताई, और आज विश्वामित्र तपोनिष्ठ है। मेनका की कथा सुनी है, राम जी ने कथा सुनी है, और यहां रात को विश्राम करने के लिए उस बगीचे में रहे हैं विश्वामित्र। महाराज जनक चले गए हैं, और सुबह उठे हैं श्री राम लक्ष्मण जी गुरुदेव के साथ, तब तो सब वहां से लेने आ गए हैं। अब जनक जी की राजसभा में ये जाके पहुंचे हैं, और वहां धनुष यज्ञ तो अभी होने वाला है, ये गुरुजन जाके जैसे वहां बैठे हैं तो विश्वामित्र कहते हैं, महाराज जनक, आप उस धनुष को, इन बालकों को देखने की इच्छा है राम लक्ष्मण को, आप इसका व्यवस्था करेंगे? महाराज जनक कहते हैं, पहले धनुष के बारे में सुनो तो सही। ये धनुष बहुत भारी भगवान शंकर के पास था। भगवान शंकर ने ये धनुष हमारे पूर्वज देवव्रत महाराज को दिया था, और देवव्रत महाराज की पीढ़ी में हमारे पास ये धनुष पूजता आ रहा है। ऐसे 2 धनुष विश्वकर्मा ने एक समय में बनाए थे। एक दिन इंद्र और नारद जी आपस में अटक गए। इंद्र ने कहा, हमारे शंकर महादेव महान है, और नारद ने कहा, नहीं, हमारा नारायण महान है। बोला, फिर ठीक है, दोनों की लड़ाई करा के देखते हैं। अखिल लड़ाई करा के देखते हैं। बोला, हाँ, ये भक्तों ने बात कर ली आपस में, विश्वकर्माओं का एक धनुष बनाओ शंकर जी के लिए। अब शंकर जी का धनुष बन के आ गया, पिनाक, पिनाक हस्तम, उनके धनुष का नाम वैसे पिनाक है जो उनके पास होता है। और शंकर जी को जाके कहने लगा, इंद्र के महाराज, हम देवता, आप महादेव, हमने तो अब शर्त लगा रखी है नारद से, आपको विष्णु से लड़ना पड़ेगा। बोला, वो तो उसका तो मैं ध्यान करूंगा, करता हूं, उससे कैसे लड़ाई करूंगा? बोला, महाराज, आपको हमारी बात रखनी पड़ेगी। और शंकर जी ने कहा, होगा कोई लीला भगवान की। और विष्णु को जाके भगवान नारायण को कहता है, नारद जी, हे मेरे आराध्य देव, आपको कृपा करके चलिए, थोड़ा सा युद्ध कीजिए, हमारे को देखने की इच्छा है। अरे, भगवान अपना धनुष लेके आए, भगवान के पास धनुष होता है, उसका नाम है सारंग। तो भगवान राम का नाम ही सारंग पाणी है। भगवान कृष्ण को चक्र पाणी कहते, पाणी का मतलब हाथ होता है। तो धनुष लेके आए,
इंद्र कहता है नहीं नहीं आपके इस धनुष से नहीं युद्ध करेंगे, दूसरा ऐसा ही धनुष बनेगा, विश्वकर्मा ही बनाएगा। अब दो धनुष बने, एक शंकर जी ने ले लिया, एक विष्णु जी ने ले लिया, दोनों का युद्ध हुआ। वो तो लीला ही कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद शंकर जी का धनुष गिर गया, गिर गया तो बोला मैं नहीं उठाऊंगा, तब देवव्रत को दे दिया और भगवान विष्णु का धनुष वहां से परशुराम के पास आया। तो परशुराम के पास ये धनुष लेकर परशुराम आएंगे, राम जी को देंगे परीक्षा के समय। आगे महाराज जनक कहते हैं वो धनुष हमारे घर में पूजा होती थी, एक दिन मैंने देखा ये हमारी जो बेटी सीता है, सीता शब्द सीत से निकलता है, सीत कहते हैं हल के लोहे के टुकड़े को, जो पिलो का नीचे लोहे का टुकड़ा होता है उसको सीत कहते हैं, वो धरती को जब चीरता है तो चीरते हुए निकली है तो उसका नाम सीता हो गया, तो ऐसे उसका नाम सीता ऐसे हो गया, सीत से प्रकट हुई है यज्ञ भूमि के शोधन करते हुए। उसका नाम वैसे जानकी है, जनक की बेटी जानकी हो गई, विदेही है तो जनक का नाम विदेह राज है इसलिए वो विदेही है, ये कल तक आएगी बात विदेह क्यों कहते हैं जनक को। सो जो भी है कि एक दिन मैंने देखा, महाराज जनक कहते हैं कि ये छोटी बालिका जो भूमि पुत्री है ये उस धनुष को उठाकर नीचे से झाड़ू निकाल के सफाई कर दी। हमको आश्चर्य लगा, कहीं कहीं हास्य रामायणों में लिखा है कि अपनी सहेलियों से खेलते खेलते एक फूल ऊपर देखा जानकी ने, तो सब सहेलियों ने कहा इस फूल को कैसे उतारेंगे, जानकी ने कहा मैं अभी धनुष लेके आती हूं, अंदर से वो धनुष लाई, टेढ़े धनुष से डाली को नीचे किया और एक मंत्री ने सेवक ने देखा कि ये धनुष 50-500 आदमी धक्का दे के गाड़ी में लाते हैं, ये लड़की उठा के जाके महाराज जनक को बोला, महाराज जनक आश्चर्य वो आपकी छोटी लाली जानकी वो धनुष से पेड़ की डाली। बोला पागल हो गया है क्या, इसको पागल खाने में अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, आज्ञा मानेंगी कि मैं इसको देख सकता हूं। जनक जी की ओर देखा, जनक जी को विश्वामित्र ने कहा, बोला हाँ।